आगे सबक देखिए भाई। फसलुन वइदा तल्लक़ अर्रजुलु इम्रअतहु फलहा नफ़क़तु वस्सुकना फ़ी इद्दतिहा रजईयन काना अव बाइना। وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملة। भाई गुज़श्ता सबक में साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि जिस तरह औरत का नफका खावंद के जिम्मा होता है, इसी तरह खावंद के जिम्मा है कि वह औरत को उसके रहने के लिए रिहाइश भी मुहैया करे भाई। और खावंद पर औरत का यह हक है कि खावंद उसको अलग घर दे जिसके अंदर खावंद के रिश्तेदारों में से कोई भी ना हो, इल्ला ये कि औरत खुद उनके साथ रहने को इख्तियार कर ले। और अगर इस खावंद की औलाद है किसी दूसरी बीवी से तो उसको भी इस औरत के साथ इस घर में नहीं ठहरा सकता। अलबत्ता अगर खावंद ने औरत को घर में एक अलग कमरा दे दिया जिसकी चाबी औरत के पास है और जिसके अंदर औरत की इजाजत के बगैर कोई आ जा नहीं सकता, तो इस सूरत में भी औरत का हक अदा हो गया, अब वो अलग घर का मुतालबा नहीं कर सकती भाई। और फिर साहिब हिदाया ने आपको ये भी बतलाया था कि जिस तरह औरत जो है वो अपने साथ खावंद के रिश्तेदारों में से किसी को न रहने दे, ये उसका हक है। इसी तरह ये जो घर है जिसके अंदर औरत रह रही है ये खावंद का हक है, खावंद की मिल्कियत है, लिहाजा खावंद इसके अंदर औरत के रिश्तेदारों को आने से मना कर सकता है कि इस घर के अंदर न उस औरत के वालिदैन आएंगे, न उसके बहन भाई आएंगे और न उसकी किसी दूसरे खावंद से कोई औलाद है, वो भी इस घर के अंदर नहीं आएगी अगर खावंद मना कर देगा। अलबत्ता इन रिश्तेदारों से खावंद बातचीत करने से मना नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि इस सूरत में कता रहमी लाजिम आएगी, यानी रिश्ता तोड़ना लाजिम आएगा और शरीयत ने तो रिश्ते जोड़ने का हुक्म दिया है, तोड़ने से मना किया है भाई। जबकि दूसरा कौल यह है कि खावंद इन रिश्तेदारों को घर में आने से और औरत के साथ बातचीत करने से नहीं रोक सकता, अलबत्ता वो इनको ज्यादा देर ठहरने से रोक सकता है भाई, इसलिए क्योंकि फितना ज्यादा देर ठहरने में और लंबी बातें करने में होता है भाई। जबकि मुफ्ता बिही कौल यह है कि औरत अपने वालिदैन से मिलने के लिए हर हफ्ते के अंदर एक मर्तबा जा सकती है या वो इससे मिलने के लिए आ सकते हैं, जबकि बाकी रिश्तेदारों के साथ साल में एक दफा औरत मिलने जा सकती है। बाकी करीबी महरम रिश्तेदार, याद रखना ये महरम रिश्तेदारों की बात हो रही है, जबकि जो गैर महरम है वो अजनबियों के दर्जे में है भाई। और फिर साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया था कि अगर कोई आदमी गायब हो गया और उसका कोई माल बतौर अमानत के या बतौर मुजारबत के या बतौर दैन के किसी आदमी के पास है, और फिर वो जो आदमी है जिसके पास अमानत है या जिसके पास माल मुजारबत है या जिसके ऊपर देन है, अगर वो इस माल का भी एतराफ करता है और इस औरत के उस गायब की बीवी होने का भी एतराफ करता है, तो फिर काजी इसी माल के अंदर इस बीवी का नफका मुकरर कर सकता है और नीज इसी माल के अंदर काजी जो है उस गायब शख्स की नाबालिग औलाद और उसके वालिदैन का नफका भी मुकरर कर सकता है। और अगर वो शख्स जिसके पास ये माल है वो माल का एतराफ नहीं करता या इस औरत के बीवी होने का एतराफ नहीं करता या दोनों चीजों का ही एतराफ नहीं करता, अलबत्ता खुद काजी को इलम है, मसलन वो शख्स काजी के सामने इसके पास अमानत रखवा कर गया था या काजी के सामने उसने इस आदमी को मुजारबत के तौर पर माल वगैरह दिया था, तो फिर इस सूरत के अंदर काजी को जब इलम है फिर ये शख्स चाहे एतराफ न भी करे फिर भी काजी इसके औरत के लिए नफके का फैसला कर सकता है भाई। और साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि अगर ये शख्स एतराफ नहीं करता और काजी को भी इलम नहीं है तो औरत बयीना के जरिए भी इन चीजों को साबित नहीं कर सकती यहां पर, इसलिए क्योंकि ये शख्स जो है ये औरत का फरीके मुखालिफ नहीं। मसलन अगर ये इस औरत के उस गायब की बीवी होने का तो एतराफ कर रहा है लेकिन उस माल का एतराफ नहीं कर रहा और औरत बय्यना के जरिए माल साबित करना चाहती है अपने गायब खाबंद का, तो इस सूरत में औरत की बय्यना कबूल नहीं की जाएगी क्योंकि यह शख्स इसका फरीक मुखालिफ नहीं। इस आदमी के पास इसके खावंद ने माल रखवाया था तो खावंद तो बय्यना पेश करे फिर तो कबूल किया जाएगा, औरत का बय्यना इस सिलसिले में कबूल नहीं किया जाएगा। और अगर ये जो शख्स है मुदा जो है अगर इस औरत के बीवी होने का एतराफ नहीं करता, कहता है मुझे नहीं इलम की ये उसकी बीवी है या नहीं है, और औरत बय्यना कायम कर देती है कि मैं उस गायब आदमी की बीवी हूं, ये दो गवाह मौजूद हैं, इनके सामने मेरा उस आदमी के साथ निकाह हुआ था, तो इस सूरत में भी साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि ये जो मुद्दा है ये इस औरत का फरीक मुखालिफ नहीं, लिहाजा यहां पर भी औरत की बय्यना कबूल नहीं की जाएगी। औरत ने अपना बीवी होना साबित करना है, उसके अंदर खावंद तो इसका फरीक मुखालिफ हो सकता है, खावंद अगर इनकार करेगा औरत दो गवाह पेश कर देगी कि इनके सामने मेरा इस खावंद के साथ निकाह हुआ था, तो खावंद तो यहां फरीक मुखालिफ बन सकता है लेकिन ये मुदा फरीक मुखालिफ नहीं हो सकता इसके बीवी होने में। लिहाजा जब यह शख्स खुद माल का भी एतराफ कर ले और इस औरत के बीवी होने का भी एतराफ कर ले तो फिर काजी उसके हक में फैसला कर देगा। और यह भी बताया था साहिब हिदाया ने कि वो जो माल है इस मुदा के पास वो इसी औरत के हक की जिंस में से होना चाहिए, यानी जो औरत का हक बनता है यानी दिरहम हो या दीनार हो या फिर गल्ला है यानी गंदम है या इस किस्म के कपड़े हैं जो इस औरत का हक बनते हैं, तो फिर इस सूरत में काजी इसी के अंदर फैसला कर देगा भाई। और अगर वो माल और जिंस से है, मसलन वो इस मुदा के पास अपना गुलाम रखवा कर गया है या कुछ जमीन अपनी इसके हवाले करके गया है या कोई और तिजारत का सामान इसके हवाले करके गया है, तो फिर इस सूरत में काजी इस औरत का नफका इसके अंदर मुकर्रर नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए फिर इस सामान को बेचना पड़ेगा और गायब के खिलाफ उसको इस सामान को बेचना यह बिल इत्तेफाक जायज नहीं है। हाजिर के बारे में तो साहिबैन फरमाते हैं कि हाजिर आदमी के सामान को काजी बेच सकता है, मसलन एक शख्स है उस जैद ने उसके पैसे अदा करने हैं लेकिन जैद पैसे अदा नहीं कर रहा और जैद के पास कुछ सामान है, जैद उसको बेच कर कर्जा अदा कर सकता है लेकिन वो अदा नहीं कर रहा, वो हक अदा करने से रुका हुआ है, लिहाजा काजी जो है इस जैद पर पाबंदी लगा देगा और काजी खुद इसका सामान बेच देगा और उसके जरिए उस आदमी का हक अदा कर देगा। तो साहिबैन फरमाते हैं हाजिर आदमी तो चूंकि हक अदा करने से रुक जाता है तो उसका हक की अदायगी से रुकना वो मालूम है, लिहाजा उस पर काजी पाबंदी लगाकर उसके सामान को बेच सकता है, लेकिन गायब आदमी का तो हक की अदायगी से रुकना मालूम नहीं, वो आए और फिर वो हक अदा न करे फिर तो काजी बेच सकता है लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में अभी तो उसका हक की अदायगी से रुकना ही मालूम नहीं है भाई। तो ये तो साहिबैन के नजदीक है, जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि काजी न हाजिर आदमी के सामान को बेच सकता है और न गायब आदमी के सामान को बेच सकता है। वजह यह कि हाजिर आदमी के सामान को भी अगर काजी बेचेगा तो उस पर पाबंदी लगाकर बेचेगा, मालूम हुआ हाजिर बया नहीं कर सकता और काजी बया कर सकता है, तो यह पाबंदी उस पर लगाना पड़ेगी और आकिल बालिग शख्स पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। चुनांचे इमाम साहब फरमाते हैं हाजिर आदमी के सामान को नहीं बेचा जा सकता और जब हाजिर आदमी के सामान को नहीं बेचा जा सकता तो गायब के सामान को बतरीके औला नहीं बेचा जा सकता। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बताया था कि काजी इस औरत से कसम भी ले लेगा, कहीं ऐसा ना हो खावंद इसको नफका दे कर गया हो तो औरत कसम खाकर कहेगी कि उसका खावंद उसे नफका देकर नहीं किया, और नीज इस औरत से काजी जामीन भी ले लेगा कि अगर वो खावंद वापस आया और पता चला कि वो तो नफका देकर गया था या इस औरत का हक नहीं बनता था, वो इसको तलाक दे गया था और इसकी इद्दत भी गुजर चुकी थी, तो फिर इस सूरत में ताकि वो जो माल अदा किया गया है उसको वसूल किया जा सके इस औरत से या इसके जामिन से भाई। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि गायब आदमी के माल में से काजी सिर्फ इन्हीं मजकूरा अफराद का नफका मुकर्रर कर सकता है, यानी उसकी बीवी और उसकी नाबालिग औलाद और उसके वालिदैन का, वजह यह कि इनका नफका दरअसल कजाए काजी से वाजिब नहीं हुआ, इनका नफका पहले से ही वाजिब था, हत्ता कि ये उस शख्स की मर्जी के बगैर उसके माल में से लेना चाहें तो ले सकते हैं कजाए काजी से पहले भी। कजाए काजी से पहले भी ये उस शख्स के माल में से उसकी रजामंदी के बगैर अपने नफके के बकदर अपने हक को वसूल करना चाहें तो ले सकते हैं। तो काजी ने तो सिर्फ इनकी मदद की है, जबकि बाकी जो हैं अगर और रिश्तेदार हैं और वहां उनको नफका देने की हाजत पेश आती है तो इस सूरत में वो कजाए काजी का मोहताज है भाई, वो कजाए काजी का मोहताज है क्योंकि वो मुज्तहद फी मसला है। हत्ता कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह तो फरमाते हैं कि ये बीवी और मां बाप और नाबालिग औलाद के अलावा और किसी का नफका आदमी पर वाजिब होता ही नहीं है। तो मालूम हुआ बाकी रिश्तेदारों के नफका जो है वो मसला मुश्तहद फी है, उसके अंदर इश्तिहाद की गुंजाइश है चूंकि, तो लिहाजा वहां काजी का फैसला जरूरी है, काजी के फैसले के बगैर उनका नफका वाजिब नहीं होगा। और इस वक्त तो ये आदमी गायब है तो काजी गायब के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता भाई। और फिर साहिब हिदाय ने यह भी बतलाया था कि अगर इस औरत का बीवी होना मालूम नहीं, न काजी को इलम है और न वो आदमी एतराफ कर रहा है और औरत बयना कायम करती है कि मैं उस गायब आदमी की बीवी हूं, या दूसरी सूरत है कि वो गायब आदमी कोई माल छोड़कर ही नहीं गया और किसी के पास अमानत वगैरह भी नहीं रखवाई और अब औरत दो गवाह पेश करती है और साबित करती है कि मैं उसी गायब आदमी की बीवी हूं, ए काजी साहेब आप मेरे लिए नफका भी मुकर्रर फरमा दीजिए और मुझे कर्ज लेने की इजाजत भी दीजिए ताकि मैं अपने उस गायब खावंद के जिम्मे में कर्ज लेती रहूं और वो वापस आएगा तो ये सारा देन अदा कर देगा। तो हमारे आइमा फरमाते हैं कि इस सूरत में काजी जो है ये फैसला नहीं करेगा। औरत अपना बीवी होना बयना के जरिए साबित कर रही है तो काजी ये फैसला नहीं करेगा क्योंकि ये कजा अलल गाइब है, गायब आदमी के खिलाफ फैसला है और गायब आदमी के खिलाफ फैसला नहीं किया जा सकता। जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इन सूरतों में काजी इस औरत के हक में फैसला कर देगा और इसके लिए नफका मुकर्रर कर देगा। वजह यह कि यहां पर हाजत है भाई और इस जो गायब है उसका कोई नुकसान भी नहीं है क्योंकि आपने इस औरत से जामीन ले लिया है भाई, इस औरत से आपने जामीन ले लिया है। तो अगर कोई ज्यादती भी साबित हो गई बाद में तो फिर इस सूरत में भी वो माल इस औरत या इसके जामीन से वसूल किया जा सकता है। और साहिब हिदाय ने बतलाया कि आजकल काजियों का अमल इमाम जुफर रहमल्ला के कौल पर ही है भाई, वजह यह कि लोग इसके मोहताज हैं, लोग बीवी बच्चों को छोड़कर गायब हो जाते हैं, उनको नफका वगैरह ही नहीं देते भाई। तो काजी इस लोगों की हाजत की वजह से यहां पर इस नफके के मामले में गायब आदमी के खिलाफ भी काजी फैसला कर देगा क्योंकि ये नफके का मामला है। आम मामलात में काजी गायब आदमी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता लेकिन यहां इमाम जुफर रहमतुल्लाह के कौल पर फतवा है कि काजी गायब आदमी के खिलाफ भी उसके माल में से नफका मुकर्रर कर देगा। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। फसलुन व इदा तल्लकर रजुल उम्रातहु फलहन नफकतु वस्सुकना फी इद्दतिहा रजईयन काना औ बाइना। याद रखो इंदल अहनाफ भाई, जब कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दे तो इद्दत के दौरान उसका नफका खावंद के जिम्मे है, चाहे तलाक बाइन दी हो और चाहे तलाक रजई दी हो भाई। तो कहते हैं वह इदा तल्लकर रजुल उम्रातहु, और जब कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दे, फलहन नफकत वस्सुक ना फी इद्दतिहा, तो इस औरत के लिए नफका भी होगा और रिहाइश भी होगी, फी इद्दतिहा इसकी इद्दत में, रजईयन कान औ बाइना, चाहे वो तलाक जो खावन ने दी है वो चाहे रजई हो या बाइन हो। वकाल शाफिय रहमहुल्लाह तआला ला नफकत लिल मबतूतति, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मबतूता के लिए नफका नहीं होगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तलाक रजई वाली औरत जो है उसके लिए तो नफका होगा लेकिन जिस औरत को खावन ने तलाक बाइन दी है या तीन तलाकें दी हैं यानी मबतूता है तो फिर इस सूरत में उसके लिए नफका नहीं होगा। हां अगर ये मबतूता हामिला है, मबतूता यानी जिसको काटा गया है यानी रुजो से, यानी खामन ने तलाक बाइन दे दी है या तीन तलाकें दे दी हैं, तो अब यहां रुजू नहीं हो सकता। तो यह है मबतूता, या यूं कहें मबतूता वो औरत जिसको काट दिया गया है निकाह से, यानी उसका निकाह खत्म हो गया है। और वो कौन सी औरत होती है जिसको खावन तलाक बाइन दे दे या तीन तलाकें दे दे। भाई तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये जो मबतूता है इसका निकाह पूरे तौर पर टूट चुका है, लिहाजा इद्दत के दौरान इसका नफका खावन के जिम्मे नहीं होगा। हां अलबत्ता अगर ये मबतूता हामिला है फिर इस सूरत में वो फरमाते हैं कि इसका नफका खावन के जिम्मे होगा, इसलिए क्योंकि कुरान में अल्लाह इसका हुक्म फरमाते हैं। आगे वो साहिब हिदाया आयत भी जिक्र फरमाएंगे जिसके अंदर अल्लाह ताला मुतल्लका हामिला के नफके को जिक्र फरमा रहे हैं। भाई तो कहते हैं वकाल शाफी रहमहुल्लाह ताला ला नफकता लिल मबतूतती, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मबतूता के लिए नफका नहीं होगा इल्ला इदा कानत हामिला, मगर यह कि जिस वक्त वो औरत हामिला हो, अगर मबतूता हामिला है फिर उसके लिए नफका होगा। तो तलाक रजई के अंदर तो इंदल अहनाफ भी नफका होगा और इंद शवाफ भी नफका होगा। तो कहते हैं अम्मर रजई, तो तलाक रजई जो है फली अन निकाह बादहु कायमुन, कहते हैं इसलिए क्योंकि निकाह इस तलाक के बाद भी मौजूद है, ला सियमा इंदना खास तौर पर हमारे नजदीक, फइन्नहु यहिल्लु लहुल वतु, इसलिए क्योंकि खावन के लिए वती हलाल है। भाई आप जानते हैं इंदल अहनाफ तलाक रजई के बाद भी खावन के लिए वती हलाल है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक वती हलाल नहीं, तलाक रजई के बाद खावन के लिए वती हलाल नहीं, लेकिन इंदल अहनाफ तलाक रजई के बाद भी खावन के लिए वती हलाल है। हां खावन वती करेगा तो रुजू हो जाएगा। भाई तो कहते हैं अमर रजई, तो तलाक रजई जो है फली अन निकाह बादहु कायमुन, कहते हैं इसलिए क्योंकि तलाक रजई के बाद भी निकाह कायम है, ला सियमा इंदना खास तौर पर हमारे नजदीक, फइन्नहु यहिल्लु लहुल वतु, इसलिए क्योंकि खावन के लिए वती हलाल है, व अम्मल बाइनु, और बाकी तलाक बाइन जो है फवजहु कौलिही, तो उसमें इमाम शाफी रहमतुल्लाह के कौल की जो वजह है, मारुविया अन फातिमा बिनती कैस रजी अल्लाह ताला अन्हा, तो उसकी वजह वो हदीस है जो रिवायत की गई है, अन फातिमा बिनती कैस रजी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत फातिमा बिनते कैस रजी अल्लाह ताला अन्हा से, कालत वो फरमाती हैं तल्लकनी ज़ौजी सलासन, कि मेरे खावंद ने मुझे तीन तलाकें दी, फलम यफ़रिज़ ली रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम सुकना वला नफका, तो हुजूर अलैहि सलाम ने मेरे लिए रिहाइश और नफका मुकर्रर नहीं फरमाया। फरासा यफ़रिज़ का माना है मुकर्रर करना। तो इमाम शाफी नवला फरमाते हैं कि मबतूता यानी जिसको खावंद ने तलाके बाइन दी है या तीन तलाकें दी हैं, उसका नफका खावंद के जिम्मे नहीं है इद्दत के दौरान। और वो दलील के तौर पर हज़रत फातिमा बिनते कैस रजी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस जिक्र फरमाते हैं, वो फरमाती हैं कि मेरे खावंद ने मुझे तीन तलाकें दी थी और हुजूर अलैहि सलाम ने मेरे लिए नफका और सुकना मुकर्रर नहीं फरमाया। आगे देखिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है। भाई एक नकली दलील जिक्र कर दी भाई, और वो हज़रत फातिमा बिनते कैस रजी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है। भाई अब आगे इमाम शाफी रहमतुल्लाह के लिए अकली दलील जिक्र फरमा रहे हैं साहिब हिदाया, कहते हैं वली अन्नहु ला मिल्का लहू, और इसलिए क्योंकि खावन की मिल्कियत नहीं है। भाई औरत को खावन ने तलाके बाइन दी है या तीन तलाकें दी हैं, और तलाके बाइन से भी खावन की मिल्कियत औरत पर खत्म हो जाती है, निकाह टूट जाता है पूरे तौर पर, और इसी तरह तीन तलाकों से भी निकाह पूरे तौर पर टूट जाता है, तो खावन की मिल्कियत औरत पर बाकी नहीं रही। और जब खावन की औरत पर मिल्कियत बाकी नहीं रही तो अब इस औरत का नफका भी खावन के जिम्मे नहीं होगा। वो फरमाते हैं ये इसी तरह है जैसे मुतवफा अनहा जौजुहा, वो औरत जिसके खावंद का इंतकाल हो जाए, तो ये औरत जो है इसका नफका भी खावन के माल में से नहीं होगा, इसका नफका भी खावन के माल में से नहीं होगा, क्योंकि वफात की वजह से खावन की मिल्कियत इस पर से खत्म हो चुकी है। मालूम हुआ जहां खावन की मिल्कियत होगी वहां नफका आएगा, और जहां मिल्कियत नहीं वहां नफका भी नहीं। तो कहते हैं वली अन्नहू ला मिल्का लहू, और इसलिए क्योंकि खावंद की कोई मिल्कियत नहीं है इस मबतूता में, यानी खावंद को मिलके निकाह हासिल नहीं है भाई इस मबतूता में। वही मुरत्तबतुन अलल मिल्की, और ये जो नफका है ये तो मुरत्तब होता है मिल्कियत पर, जबकि यहां तो मिल्कियत नहीं है। वलिहादा ला तजिबु लिल मुतवफ्फा अनहा ज़ौजुहा, और इसीलिए नफका जो है उस औरत के लिए वाजिब नहीं होता जिसके खावन का इंतकाल हो चुका हो। लिन इदामी ही, बवजह मिल्कियत के मादूम होने के, कि वहां खावन की मिल्कियत मादूम है। बिखिलाफी मा इदा कानत हामिला, बखिलाफ उस सूरत के कि जब यह औरत हामिला हो। भाई इमाम शाफी रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं कि मबतूता के ऊपर खावन की मिल्कियत नहीं, जब खावन की मिल्कियत नहीं तो उसके लिए नफका भी नहीं होगा। तो सवाल पैदा होता है कि अगर मबतूता हामिला हो फिर तो आप भी कहते हैं कि उसके लिए नफका होना चाहिए, हालांकि मबतूता हामिला उस पर भी तो खावन की मिल्कियत नहीं है। तो उसका जवाब देंगे कि भाई वो कुरान से साबित है भाई, खिलाफ उल कियास, कियास को यही तकाजा करता है कि मबतूता हामिला उससे भी निकाह टूट चुका है, उसके ऊपर भी खावन को मिल्कियत है निकाह अब हासिल नहीं, लिहाजा उसका भी नफका खावन पर नहीं होना चाहिए। लेकिन खिलाफुल कियास उसका जिक्र कुरान में आ गया। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वह इन कुन न उलाति हमलिन, कि अगर ये मुतल्लकात जो हैं ये हमल वालियां हैं, फअनफिकू अलैहिन्ना, तो इन पर खर्च करो। ये मालूम हुआ इनका नफका खावन के जिम्मे है। मालूम हुआ मबतूता हामिला का नफका खिलाफुल कियास कुरान से साबित है। तो कहते हैं बिखिलाफी मा इदा कानत हामिला, बखिलाफ उस सूरत के कि जब यह मबतूता हामिला हो। लिअन्ना अरफनाहु बिन्नसी, इसलिए क्योंकि हमने यहां वुजूब नफका को नस की वजह से जाना है। वह हुआ कौलुहु ताला, और वह अल्लाह ताला का यह कौल है। वह इन कुन्न उलाति हमलिन, और अगर ये मुतल्लकात जो हैं ये हमल वालियां हैं, फअनफिकू अलैहिन्ना, तो इन पर खर्च करो। अल आया ऐ इकरा इल आयता, तो अल आयता मंसूब भी पढ़ सकते हैं और मरफू भी पढ़ सकते हैं। अल आयतु मालूमतुन, कि हमने कुछ हिस्सा पढ़ दिया, बाकी आयत मालूम है, आप पढ़ लीजिए। अब आगे हमारी दलील आ रही है वलाना, और हमारी दलील यह है कि अन्ना नफकता जजा उहतिबास इन अलामा जकरना, कि यह नफका जो है इहतिबास की जजा है, इहतिबास का बदला है, अलामा जकरना उस वजह से जो हमने जिक्र कर दी। पीछे जिक्र आया था भाई बीवी का नफका खावंद पर क्यों वाजिब होता है, क्योंकि औरत ने अपने आप को खावंद के लिए घर में रोक कर रखा हुआ है। इस रुकने को इहतिबास कहते हैं। हमारे नजदीक यह नफका किसका बदला होता है, इहतिबास का बदला है, इहतिबास की जजा है, और इहतिबास यहां मबतूता में भी मौजूद है। मबतूता जिसको खावन ने तलाक बाइन दी है या तीन तलाकें दी हैं, यह भी जब तक इद्दत में है आगे निकाह नहीं कर सकती, तो इहतिबास यहां पर भी पाया जा रहा है, और जब इहतिबास मौजूद है तो इसका नफका खावंद के जिम्मे होगा। कहते हैं वलना, और हमारी दलील यह है कि अन्ना नफकता जजा उहतिबास इन अला माजा करना, कि जो नफका है यह इहतिबास का बदला है उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया। वल इहतिबास क़ाइमुन फी हक हुक्म मकसूद बिन निकाह, वल इहतिबास क़ाइमुन, और यह इहतिबास मौजूद है, फी हक हुक्म मकसूद बिन निकाही, उस हुक्म के हक में जो निकाह से मकसूद है। भाई निकाह के जरिए क्या मकसूद होता है, कि अफजाइश नस्ल हो, तवालुद हो, औलाद हासिल हो भाई। तो लिहाजा ये यहां पर भी वो हुक्म जो निकाह की वजह से मकसूद होता है यानी औलाद, उसके लिए इहतिबास मौजूद है। उसके लिए क्या माना औलाद के लिए इहतिबास है, क्योंकि हो सकता है ये औरत हामिला हो भाई, तो इसके पेट में खावंद की औलाद हो, तो उस औलाद की वजह से इस औरत को इद्दत गुजारना पड़ेगी, और जब पता चल जाएगा कि औलाद नहीं है तो फिर उसके बाद इद्दत गुजार कर आगे निकाह कर सकती है भाई। तो यहां पर भी ये जो औरत पर इहतिबास आया है किसकी वजह से आया, औलाद की वजह से, और वो औलाद तो निकाह के जरिए मकसूद होती है। तो मालूम हुआ निकाह के एक हुक्म की वजह से इहतिबास पाया जा रहा है। किसके हुक्म की वजह से, निकाह के हुक्म की वजह से। तो जब एहतिबास मौजूद है तो खावन पर उसका नफका भी आएगा। तो कहते हैं वल एहतिबास कायमुन, और एहतिबास मौजूद है फी हक हुक्म मकसूद बिन निकाही, उस हुक्म के हक में जो निकाह से मकसूद होता है। वह हुवल वलदु, और वो औलाद है। इदिल इद्दतु वाजिबतुन लिसियानतिल वलदी, इसलिए क्योंकि ये इद्दत वाजिब होती है औलाद की हिफाजत के लिए, ताकि कहीं बच्चे का नसब मुश्तबे न हो जाए। भाई तो कहते हैं इदिल इद्दतु वाजिबतुन लिसियानतिल वलदी, इसलिए क्योंकि ये इद्दत वाजिब होती है औलाद की हिफाजत के लिए। फतजिबुन नफकतु, तो नफका भी वाजिब होगा। वलिहादा कान लहा सुकना बिल इजमाई, और इसी वजह से यानी इसी एहतिबास की वजह से इस औरत के लिए रिहाइश भी वाजिब होगी बिल इजमा, यानी इसमें हमारा और शवाफे का इत्तेफाक है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह जो हैं, जो फरमाते हैं कि मबतूता के लिए नफका नहीं होगा, रिहाइश को वो भी तस्लीम करते हैं कि इस मबतूता के लिए रिहाइश होगी भाई, क्योंकि कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, अस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकंतुम मिन वुजदिकुम, तो वो फरमाते हैं इस मबतूता के लिए सुकना होगा, रिहाइश होगी। तो रिहाइश में गोया हमारा और उनका इत्तेफाक है। तो हम कहते हैं कि ये एहतिबास मौजूद है, इसीलिए इस औरत के लिए बिल इत्तेफाक सुकना यानी रिहाइश भी है। तो ये भी उस हामिला की तरह हो गई, वो मबतूताए हामिला, और मबतूताए हामिला के लिए तो नफका था, लिहाजा इसके लिए भी नफका होगा। तो कहते हैं वली हादा, और इस एहतिबास की वजह से कान अलह सुकना बिल इजमाई, इस औरत के लिए बिल इत्तेफाक रिहाइश होगी। वसार कमा इदा कानत हामिला, और ये ऐसे ही हो गई जैसे ये औरत हामिला हो, जैसे हामिला के अंदर एहतिबास मौजूद है, जब तक वो हामिला है वो आगे निकाह नहीं कर सकती, और जैसे उसके लिए सुकना भी है और नफका भी है। तो ये औरत जो है ये मबतूता गैर हामिला भी किसकी तरह हो गई, हामिला की तरह हो गई, क्योंकि एहतिबास दोनों में पाया जा रहा है और दोनों के लिए बिल इत्तेफाक सुकना भी है। जब दोनों के लिए सुकना है, मालूम हुआ ये मबतूता गैर हामिला भी किसकी तरह हो गई, हामिला की तरह, और हामिला के लिए तो नफका भी था, लिहाजा इसके लिए भी नफका होगा भाई। तो ये माना है वसार कमा इदा कानत हामिला, और ये इसी तरह हो गई जैसे कि औरत हामिला हो। तो यहां एतराज होता है कि ए अहनाफ, नस के अंदर तो मबतूता हामिला का जिक्र था कि उसका नफका खावन पर है, और आपने मबतूता गैर हामिला को भी हामिला वाला हुक्म दे दिया, तो फिर नस का फायदा क्या हुआ जी। नस के अंदर तो तख्सीस थी हामिला की जी। तो फिर उस तख्सीस का फायदा क्या हुआ, आपने मबतूता गैर हामिला को भी वही हुक्म दे दिया। तो जवाब यह कि भाई नस का फायदा यह है कि उसकी वजह से दरअसल इश्तबाह को खत्म करना मकसूद था। वजह यह कि मबतूता की इद्दत तो तीन हैज है, लेकिन हामिला की इद्दत तो लंबी हो सकती है भाई। तो इश्तबा पैदा होता है कि क्या इस सारी इतनी लंबी मुद्दत का नफका भी खावन के जिम्मे होगा। तो नस में बतला दिया गया कि हां, हामिला जब है तो वज़ह हमल तक जितनी मुद्दत है सारा नफका खावन के जिम्मे होगा, क्योंकि इस औरत के पेट में खावन की औलाद है। तो नस का मकसूद क्या था, इश्तबा को खत्म करना था, किसी के जहन में यह इश्तबा ना आ जाए कि ये तो हामिला है, इसकी इद्दत तो लंबी हो सकती है, तो क्या इतनी मुद्दत तक खावन सारा खर्चा उठाता रहेगा। तो नस में बतला दिया गया कि हामिला के वज़ह हमल तक सारा नफका खावन के जिम्मे होगा। बात समझ में आ गई। आगे देखिए वह हदीस फातिमा बिन्ती क़ैस रजी अल्लाह तआला अन्हा रद्दहु उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु فإنه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة। आप साहिब हिदायत जवाब दे रहे हैं हजरत फातिमा बिन्त कैस रजी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस का। कहते हैं वह हदीस फातिमा बिन्त क़ैस रद्दहु उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि हज़रत फातिमा बिनते कैस रजी अल्लाह ताला अन्हा की जो हदीस है उसको हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने रद फरमाया। फइन्नहु कालत, उन्होंने फरमाया, ला नदाउ किताब रब्बिना व सुन्नत नबीना। वदा यदाउ का माना होता है छोड़ना, तो हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं, ला नदाउ किताब रब्बिना, कि हम अपने परवरदिगार की किताब को नहीं छोड़ सकते। व सुन्नत नबीना, और इसी तरह अपने नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ सकते। बिकौल मरातीन, एक औरत के कौल की वजह से, ला नदरी, हम नहीं जानते, सदकत अम कज़बत, कि उसने सच कहा है या झूठ कहा है। हाफिजत अम नसीयत, हम नहीं जानते कि उसको याद है या उसको भूल गया है। समियतु रसूल अल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम यकूलु, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है, लिल मुतल्लकति सलासिन नफकतु वस्सुकना, कि तीन तलाक वाली के लिए नफका भी होगा और सुकना भी होगा। मा दामत फिल इद्दती, जब तक वो इद्दत में है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने हजरत फातिमा बिनते कैस रजी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस को रद्द फरमाया। फिर जरा हदीस का तर्जमा देख लीजिए, तो कहते हैं, वह हदीस फातिमा बिनत कैस रद्दहु उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, कि हज़रत फातिमा बिनत कैस रजी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस को हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रद्द फरमाया। फइन्नहु काला, क्योंकि उन्होंने फरमाया, ला नदउ किताब रब्बिना व सुन्नत नबीना, कि हम नहीं छोड़ सकते अपने रब की किताब को और अपने नबी की सुन्नत को। बिकौल मरातीन, एक औरत के कौल की वजह से, ला नदरी सदकत अम कज़बत हफिजत अम नसीयत, हम नहीं जानते कि उसने सच कहा है या झूठ बोला है, और हम नहीं जानते कि उसको याद है या उसको भूल गया है। समियतु रसूलल्लाह अलैहि सलाम यकूल, मैंने हुजूर अलैहि सलाम को यह फरमाते हुए सुना है, लिल मुतल्लकति सलासिन नफकतु वस्सुकना मा दामत फिल इद्दती, कि तीन तलाक वाली के लिए नफका भी होगा और रिहाइश भी होगी जब तक वो इद्दत में है। وردهُ أيضاً زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وجابر وعائشة رضي الله تعالى عنهم، اور نیز حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کو رد فرمایا ہے۔ حضرت زید ابن ثابت نے بھی، و اسامہ ابن زید، اور حضرت اسامہ ابن زید نے بھی، و جابر، اور حضرت جابر نے بھی، و عائشہ، اور حضرت عائشہ نے بھی رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب نے بھی کیا کیا ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیث کو رد فرمایا ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی۔ علماء نے اور بھی جوابات دیے ہیں، میں پہلے بھی ذکر کر چکا کہ صاحب ہدایہ کوئی ایک آدھ دلیل ذکر فرماتے ہیں، کوئی ایک آدھ نقلی دلیل اور ایک آدھ عقلی دلیل ذکر فرماتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ احناف کے پاس صرف یہی دلائل ہوں، یا ایسا نہیں ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس بس صرف یہی دلائل ہیں، سب کے پاس اور بھی دلائل موجود ہیں، لیکن صاحب ہدایہ کوئی ایک موٹی نقلی دلیل اور اس کے ساتھ عقلی دلیل ذکر فرما دیتے ہیں۔ تو علماء نے اور بھی جوابات دیے ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے لیے حضور علیہ السلام نے سکنا اس لیے مقرر نہیں فرمایا کیونکہ ان کا گھر ایسی جگہ پر تھا کہ وہ خطرے والی جگہ تھی، جنگل کے اندر ان کا گھر تھا، وہ خطرے والی جگہ تھی، تو اس لیے حضور علیہ السلام نے ان کو منتقل ہونے کی اجازت دی۔ یا جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ خود ان کو اپنے خاوند سے خطرہ تھا کہ اس نے اگرچہ مجھے تین طلاق دے دی ہے لیکن پھر بھی مجھے اپنے خاوند سے خطرہ ہے، تو اس لیے حضور علیہ السلام نے ان کو منتقل ہونے کی اجازت دی۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ زبان کی بہت زیادہ سخت تھیں حضرت فاطمہ بنت قیس، اس لیے حضور علیہ السلام نے ان کو منتقل ہونے کی اجازت دی گئی، تو لہذا اس لیے حضور نے ان کے لیے سکنا مقرر نہیں فرمایا۔ اور نیز نفقے کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے خاوند نے ان کے پاس نفقہ بھیجا تھا، ان کے پاس نفقہ بھیجا تھا، لیکن یہ ناراض ہوئی کہ اتنا تھوڑا نفقہ، اور وہ نفقہ واپس کروا دیا، وہ نفقہ واپس کروا دیا۔ تو حدیث میں جو آیا کہ میرے لیے حضور علیہ السلام نے سکنا اور نفقہ مقرر نہیں فرمایا، اس سے مراد ہے نفقہ زائد بھائی، یعنی خاون نے تو بھیجا تھا لیکن انہوں نے رد کر دیا تھا، تو حضور نے ان کے لیے زائد نفقہ مقرر نہیں فرمایا بھائی۔ तो हदीस में जो आया वला नफकतन, इससे मुराद यह है अई वला नफकतन जाइदतन, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए जायद नफका मुकरर नहीं फरमाया। भाई आगे देखिए वला नफकत लिल मुतवफा अनहा ज़ौजुहा। अच्छा भाई, वो औरत जिसके खावंद का इंतकाल हो जाए तो इद्दत के दौरान उसका नफका खावंद के जिम्मे नहीं, यानी खावंद के माल में से इसको नफका नहीं दिया जाएगा। भाई वजह यह है कि साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि यहां पर यह जो औरत पर शरीयत ने इद्दत वाजिब की है यह खावंद के हक के तौर पर नहीं है, बल्कि यह शरीयत के हक के तौर पर है। भाई देखिए, यह जो इद्दत गुजारती है, मसलन खावंद जो है अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो वो तीन हैज इद्दत गुजारती है। ये इद्दत जो है शरीयत का भी हक है, शरीयत ने भी वाजिब किया है, और नीज ये खावंद का भी हक है कि पता चल जाए कि औरत के पेट में कहीं खावंद की औलाद तो नहीं है, और नीज ये उस बच्चे का भी हक है ताकि कहीं बच्चे का नसब मुश्तबे ना हो जाए। भाई तो इस इद्दत के अंदर शरीयत का भी हक है, खावंद का भी हक है, और बच्चे का भी हक है। लेकिन यहां पर ये जो औरत जिसके खावंद का इंतकाल हो गया है, ये जो इद्दत गुजार रही है, ये बतौर खावंद के हक के इद्दत नहीं गुजार रही, बल्कि ये शरीयत के हक के तौर पर इद्दत गुजार रही है। वजह यह कि इसके अंदर हैजों का लिहाज नहीं रखा गया। खावंद जब तलाक देता है मदखूल बिहा औरत को तो वो तीन हैज इद्दत गुजारती है, क्योंकि वहां पर यह जानना मकसूद होता है कि कहीं यह औरत हामिला तो नहीं। तो जब उसको हैज आ रहा है तो उससे रहम की सफाई का पता चल गया। जब उसको हैज आ रहा है तो उससे उसके रहम की सफाई का पता चल गया, मालूम हो गया कि इसके पेट में खावन की औलाद नहीं है, तो तीन हैज के बाद वो जहां चाहे निकाह कर सकती है। जबकि ये औरत जिसके खावन का इंतकाल हुआ है, यहां पर चाहे हैज वाली ही क्यों ना हो, उसको इद्दत चार महीने दस दिन ही गुजारना पड़ती है। तो हैज आने के बावजूद ये इद्दत महीनों के साथ गुजारना ये बतला रहा है कि यहां पर रहम की सफाई जानना मकसूद नहीं, ये खावंद के हक के तौर पर नहीं है, बल्कि ये जो इद्दत वाजिब की गई है ये शरीयत के हक के तौर पर है। भाई तो कहते हैं वला नफकत लिल मुतवफा अनहा ज़ौजुहा, और वो औरत जिसके खावंद का इंतकाल हो जाए उसके लिए नफका नहीं है, यानी खावंद का तो इंतकाल हो चुका, उसके माल में से इसको नफका नहीं देंगे। कहते हैं लिअन्न इहतिबासहा लैसा लिहक ज़ौजी, इसलिए क्योंकि इस औरत का रुकना ये खावंद के हक की वजह से नहीं है, बल लिहक शरई, बल्कि ये शरीयत के हक की वजह से है। फइन तरबुस इबादतुम मिन्हा, तरबुस भाई स्वाद के साथ, तरबुस का माना है रुकना और ठहरना। कहते हैं फइन तरबुस इबादतुम मिन्हा, क्योंकि ठहरना रुकना यानी आगे निकाह से अपने आप को रोक कर रखना, ये इस औरत के लिए इबादत है। ये बतौर शरीयत के हक के है, शरीयत ने वाजिब किया है, तो औरत का इस चार महीने दस दिन के दौरान आगे निकाह भी ना करना और घर से भी ना निकलना और इसी तरह सोग मनाना, यानी जेबो जीनत वगैरह का इजहार न करना, ये सारा इबादत के तौर पर है, यानी शरीयत के हक के तौर पर है। भाई तो कहते हैं फइन तरबुस इबादतुम मिन्हा, इसलिए क्योंकि इस औरत के लिए ठहरना और रुकना जो है वो इबादत है। अला तरा, क्या आप देखते नहीं, अन्न मान तारुफ अन बराअति रहिम लैसा बिमुरा अन फीह। माना, माना का यहां तर्जमा कर लेंगे सबब और इल्लत के। इधर देखिए भाई, खावंद अगर तलाक दे दे, औरत इद्दत गुजारती है, तो वहां इल्लत क्या होती है, रहम की सफाई का जानना। तो यहां पर रहम की सफाई के जानने की जो इल्लत है उसको मलहूज नहीं रखा गया। ये जिसके खावंद का इंतकाल हो गया है, यहां रहम की सफाई को जानने की जो इल्लत है वो मलहूज नहीं, उसकी रियायत नहीं रखी गई। यहां तक कि चाहे इस औरत को हैज आते हो फिर भी हैजों को नहीं देखेंगे, बल्कि चार माह दस दिन के साथ ही इसको इद्दत गुजारना पड़ेगी। ये माना है अला तारा, क्या आप देखते नहीं, अन्न मान तारुफ अन बरा अतिर रहीमी, के रहम की सफाई के जानने की जो इल्लत है, लैसा बिमुराअन फीही, उसकी रियायत नहीं रखी गई इस ठहरने में। इस ठहरने में उसकी रियायत नहीं रखी गई, यानी वो मलहूज नहीं है। हत्ता ला युश्तरतु फीहिल हय्यज़ु, याद रखो यहां पर भी ये हत्ता नसब नहीं देगा, क्योंकि हत्ता के नसब देने की यहां शराइत पूरी नहीं है। तो ये युश्तरतु को हम मरफू पढ़ेंगे भाई, हत्ता ला युश्तरतु फीहिल हय्यज़ु, यहां तक कि इसके अंदर हैजों की शर्त नहीं है, बल्कि इद्दत महीनों के साथ ही गुजारना पड़ेगी। फला तजिबुन नफकतुहा अलैही, तो खावंद पर इस औरत का नफका वाजिब नहीं होगा, क्योंकि यह रुकना हक शरा की वजह से है, हक खावंद की वजह से नहीं है। तो फला तजिबुन नफकतुहा अलैही, तो खावंद पर इस औरत का नफका भी वाजिब नहीं होगा, यानी उसके माल में से नहीं दिया जाएगा। वली अन नफकत तजिबु शई अनफशई आ, ये दूसरी दलील जिक्र कर रहे हैं कि वो औरत जिसके खावंद का इंतकाल हो जाए उसका नफका खावंद के जिम्मे नहीं है। कहते हैं वजह यह कि खावंद का इंतकाल हो चुका है और इंतकाल के बाद यह माल मुंतकिल हो गया है वारिसों की तरफ और वारिस इसके मालिक बन गए हैं, और यह जो नफका होता है यह थोड़ा थोड़ा करके वाजिब होता है। मसलन आज का दिन आया तो आज का नफका वाजिब हो जाएगा, वो औरत को देना पड़ेगा। जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन का नफका वाजिब हो जाएगा, वो देना पड़ेगा। जब उससे अगला दिन आएगा तो उसका भी नफका वाजिब हो जाएगा और वह अदा करना पड़ेगा। तो यह नफका थोड़ा थोड़ा करके वाजिब होता है। और अब तो खावन की मिल्कियत ही नहीं है, यह माल तो किसकी तरफ मुंतकिल हो चुका है, वारिसों की तरफ, वारिस इस माल के मालिक बन चुके हैं। तो अब अगर नफके को वाजिब करार दिया जाए तो इसका तो मतलब यह है कि वारिसों पर नफका वाजिब किया जा रहा है, लिहाजा वारिसों के माल में से नफका वाजिब नहीं किया जा सकता। यह माना है वली अन नफकत तजिबु शई अन फशई आ, और इसलिए क्योंकि ये नफका जो है ये थोड़ा थोड़ा करके वाजिब होता है। वला मिलका लहू बादल मौती, और मौत के बाद खावन की कोई मिल्कियत नहीं है। फला युमकिनु ईजाबुहा फी मिल्किल वरासती, लिहाजा मुमकिन नहीं है कि नफका वाजिब कर दिया जाए वारिसों की मिल्कियत में। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, वकुल्लु फुरकतिन जा अतमिन किबलिल मर अति बिमासियतिन मिसलुर रिद्दति व तकबील इब्नि ज़ौजी फला नफकत लहा। भाई देखिए, यहां आपको साहिब हिदाया बतलाएंगे कि जब जुदाई औरत की तरफ से आए, जब जुदाई औरत की तरफ से आए तो इसमें दो सूरतें हो सकती हैं। या तो किसी गुनाह की वजह से यह जुदाई आएगी, यानी मासियत की वजह से, या और कभी गैर मासियत की वजह से जुदाई आएगी। मसलन देखो, अगर औरत मुर्तद हो जाए तब भी निकाह टूट जाता है, औरत खावन पर हराम हो जाती है, तो यह जुदाई औरत की तरफ से आई, क्योंकि मुर्तद कौन हुई है? औरत हुई है। इसी तरह बाज़ औक़ात औरत जो है इस खावंद के दूसरी बीवी से कोई बेटा है उसके साथ गलत ताल्लुक कायम कर लेती है, तो जब इस औरत ने खावंद के बेटे के साथ गलत ताल्लुक कायम कर लिया तो यह खावंद के लिए बहू के दर्जे में हो गई, और जब बहू के दर्जे में हो गई तो जैसे बेटे की हकीकी बीवी जो है वो खावंद पर हराम होती है हमेशा के लिए, बहू क्या होती है? इंसान पर हमेशा के लिए हराम। तो जैसे बेटे की हकीकी बीवी जो है वो खावन पर हमेशा के लिए हराम होती है, इसी तरह ये औरत जिसके साथ बेटे ने गलत ताल्लुक कायम कर लिया ये भी खावन पर हमेशा के लिए हराम हो जाती है। तो लिहाजा यहां पर भी ये जुदाई आई और इस जुदाई का सबब औरत बनी है, और ये जुदाई एक गुनाह की वजह से आई है कि इस औरत ने खावन के बेटे से गलत ताल्लुक कायम कर लिया। और बाज़ औकात जुदाई औरत की तरफ से आएगी लेकिन वो गुनाह नहीं होगा। मसलन एक नाबालिगा है, उसके वली ने उसका निकाह करवा दिया। आपने पढ़ा है कि बाप और दादा अगर सगीर या सगीरा का निकाह करवा दें तो वो निकाह लाजिम होता है, बालिग होने के बाद भी ये उस निकाह को फसख नहीं कर सकते। लेकिन अगर बाप दादा के अलावा किसी और वली ने इस सगीर या सगीरा का निकाह करवाया है तो बालिग होने पर इनको इख्तियार देती है शरीयत, ये अपने निकाह को फसख कर सकते हैं। अब एक सगीरा है, उसके वली ने उसका निकाह करवा दिया, वली बाप दादा के अलावा है, फिर ये सगीरा जिस मजलिस में बालिगा हुई जैसे ही इसने खून देखा इसने फौरन कहा मैं इस निकाह को रद्द करती हूं जी। और फिर काजी के पास जाकर इसने जुदाई हासिल कर ली। तो देखो यहां पर भी जुदाई औरत की तरफ से आई है, लेकिन ये जो जुदाई आई है इसमें किसी गुनाह और मासियत का दखल नहीं है, ये शरीयत ने इस औरत को, इस सगीरा को हक दिया था। तो इसको कहते हैं खियारे बुलूग भाई, कि बालिग होने पर शरीयत इख्तियार देती है। तो ये जो खियारे बुलूग की वजह से जुदाई आई है, ये कोई मासियत की वजह से जुदाई नहीं आई, बल्कि ये इनका हक था जो शरीयत ने इनको दिया था। ये इसी तरह बांदी है भाई, आपने पढ़ा है कि बांदी की ज्यादा से ज्यादा तलाकें दो हैं भाई, और आजाद औरत की ज्यादा से ज्यादा तीन तलाकें हैं। तो एक बांदी थी, उसका निकाह किसी शख्स से हुआ था, और फिर बाद में आका ने इस बांदी को आजाद कर दिया। तो अब जब ये बांदी आजाद होगी तो इसकी तलाकें दो से बढ़कर तीन हो जाएंगी, तीन हो जाएंगी, यानी खावंद की मिल्कियत इस औरत पर बढ़ रही है। लिहाजा शरीयत ने इस औरत को इख्तियार दिया है, ये अपना निकाह उसी मजलिस में फसख कर सकती है जिस मजलिस के अंदर इसको अपनी आजादी की इत्तिला मिले, और इसको खियारे इत्क कहते हैं कि आजादी की वजह से इसको इख्तियार मिला। तो अब एक बांदी को आका ने आजाद किया और उसने खियारे इत्क इस्तेमाल करते हुए निकाह को फसख करने का ऐलान कर दिया। तो अब यहां पर भी जुदाई औरत की तरफ से आई है, लेकिन किसी मासियत और गुनाह की वजह से नहीं, बल्कि ये इसको शरीयत ने हक दिया था। तो मालूम हुआ कि वो जुदाई जो औरत की तरफ से आए, कभी वो मासियत की वजह से जुदाई आएगी गुनाह की वजह से, और कभी गैर मासियत की वजह से। तो साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि अगर जुदाई औरत की तरफ से आए और कोई गुनाह उसका सबब बना है, तो फिर इस औरत के लिए नफका नहीं होगा इद्दत के दौरान जी। लेकिन अगर जुदाई औरत की तरफ से आए और गुनाह उसका सबब नहीं है, मसलन उसने खियार इत्क इस्तेमाल किया है या खियार बुलूग इस्तेमाल किया है, तो इस सूरत में इसका नफका होगा भाई। बात समझ में आ गई? देखिए भाई, कहते हैं वकुल्लु फुरकतिन जाअत मिन क़िबलिल मरअति, और हर ऐसी जुदाई जो औरत की तरफ से आए बिमासियतिन गुनाह की वजह से, मिसलु रिद्दती व तकबीली बनी ज़ौजी, जैसे कि मुर्तद होना है अलआयाज़ु बिल्लाह, व तकबीली बनी ज़ौजी, और खावन के बेटे का बोसा लेना, भाई इस खावन के बेटे का बोसा लेगी या उससे गलत ताल्लुक कायम करेगी तो इससे हुरमत मुसाहरत आ जाएगी भाई, और ये खावन पर हराम हो जाएगी औरत। तो ये जुदाई जो औरत की तरफ से आई है और गुनाह की वजह से आई है, फला नफकत लहा, तो इस औरत के लिए नफका नहीं होगा, इस औरत के लिए नफका नहीं होगा। यहां तक था मतन भाई, रिहाइश को जिक्र नहीं फरमाया। याद रखना, मियां बीवी के दरमियान जब भी जुदाई आ जाए और औरत मदखूल बिहा है तो उस पर इद्दत आती है, तो इस इद्दत के अंदर नफका भी खावन के जिम्मे होता है और रिहाइश भी। तो रिहाइश तो तमाम सूरतों में औरत के लिए वाजिब होगी, चाहे जुदाई औरत की तरफ से आए, चाहे मर्द की तरफ से, चाहे उस जुदाई का सबब गुनाह हो, चाहे गैर गुनाह हो, तमाम सूरतों में रिहाइश वाजिब है औरत के लिए। इसलिए यहां पर मतन में रिहाइश को जिक्र नहीं किया, सिर्फ नफके का कहा कि फला नफकत लहा, कि इस औरत के लिए नफका नहीं होगा। अब आगे दलील जिक्र फरमा रहे हैं, कहते हैं लिअन्नहा सारत हाबिसतन नफ्सहा बिगैर हक्किन, इसलिए क्योंकि ये औरत अपने नफ्स को रोकने वाली हो गई बिगैर हक्किन, बगैर हक के, ना हक तौर पर इसने अपने आप को खावन से रोक लिया। ये औरत जो मुर्तद हुई, ये खावन पर हराम हो गई, तो इसने ना हक तौर पर अपने आप को खावन से रोक लिया, या इसी तरह खावन के बेटे से गलत ताल्लुक कायम किया तो यह औरत भी खावन पर हराम हो गई, तो गोया इसने ना हक तौर पर अपने आप को खावन से रोक लिया। जब इसने ना हक तौर पर अपने आप को खावन से रोका है तो अब इसके लिए नफका नहीं होगा। जैसे नाशिजा, नाशिजा का वैसे माना तो है नाफरमान, लेकिन नाशिजा आमतौर पर वो औरत जो खावन की इजाजत के बगैर घर से निकल जाए उसको नाशिजा कहते हैं। तो जैसे नाशिजा जो है वो खावन की इजाजत के बगैर घर से निकल गई, तो जब तक वो वापस नहीं आती उसका नफका खावन के जिम्मे नहीं है। भाई औरत के जिम्मे तो वाजिब था वो अपने आप को खावन के लिए घर में रोक कर रखे कि जब खावन चाहे वो उसके साथ सोहबत कर सके, लेकिन जब ये खावन की इजाजत के बगैर घर से निकल गई तो गोया इसने अपने आप को नाहक तौर पर खावन से रोक लिया, तो इसके लिए नफका नहीं होगा। तो जिस तरह नाशिजा के लिए नफका नहीं, इसी तरह ये जो गुनाह की वजह से जिसने अपने आप को खावन से रोक लिया इसके लिए भी नफका नहीं होगा। तो कहते हैं ली अन्नहा सारत हाबिसतन नफ्सहा बिगैर हक्किन, इसलिए क्योंकि ये औरत जो है ये अपने नफ्स को रोकने वाली हो गई बिगैर हक्किन बगैर हक के, यानी ना हक तौर पर। फसारत कमा इदा कानत नाशिजतन, तो ये ऐसे ही हो गई जैसे ये नाशिजा हो, और नाशिजा के लिए तो नफका नहीं तो इनके लिए भी नफका नहीं। बेखिलाफिल महरी, हां अलबत्ता ये जो औरत जहां जुदाई औरत की तरफ से आई है और गुनाह के सबब से आई है, अगर इसके साथ खावन सोहबत कर चुका है फिर महर देना पड़ेगा। इनका नफका तो खावन के जिम्मे नहीं लेकिन महर देना पड़ेगा। वजह यह कि महर तो सोहबत की वजह से पहले से ही पक्का हो चुका है। आप जानते हैं कि जब खावन बीवी से सोहबत कर ले तो महर पक्का हो जाता है, पूरा महर देना पड़ेगा। तो यहां पर भी यह औरत चाहे मुर्तद हुई है या चाहे इसने खावन के बेटे से गलत ताल्लुक कायम किया है, जुदाई आ गई लेकिन महर देना पड़ेगा क्योंकि खावन मनाफे वसूल कर चुका है, खावन सोहबत कर चुका है, औरत ने अपने आप को खावंद के सुपुर्द कर दिया था। जब औरत ने अपने आप को खावंद के सुपुर्द कर दिया था तो उसका बदल यानी महर भी अब खावन पर लाजिम हो चुका है भाई। तो कहते हैं बिखिलाफ इल महर बाद दुखूली, बखिलाफ महर के सोहबत के बाद। लिअन्नहु वुजिदत तस्लीमु फी हक्किल महर बिल वक्ई, लिअन्नहु वुजिदत तस्लीमु, इसलिए क्योंकि सुपुर्द करना पाया गया कि औरत ने अपने आप को सुपुर्द कर दिया है। फी हक्किल महर, महर के हक में, बिल वक्ई वती के जरिए। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं लि अन्नहु वुजिदु तस्लीमु फी हक्किल महरि बिल वती, इसलिए क्योंकि वती के जरिए औरत का अपने आप को सुपुर्द करना पाया गया। फी हक्किल महरि, महर के हक में, महर के हक में औरत का अपने आप को खावंद के सुपुर्द करना पाया गया कि उसने खावंद ने उसके साथ वती कर ली है, लिहाजा अब खावंद पर भी उसका बदल यानी महर लाजिम हो गया। आगे देखिए, कहते हैं वह बिखिलाफी मा इदा जा अतिल फुरकतु मिन क़िबलिहा बिगैरी मासियतिन, बखिलाफ उस सूरत के जब जुदाई औरत की तरफ से आए बिगैरी मासियतिन बगैर किसी गुनाह के, यानी खियार बुलूग के जरिए औरत ने जुदाई इख्तियार कर ली या खियार इत्क के जरिए औरत ने जुदाई इख्तियार कर ली, तो ये तो शरीयत ने इनको हक दिया था, तो ये औरत का अपने आप को खावंद से रोकना है हक में, तो ये औरत का अपने आप को खावन से रोकना है हक के तौर पर कि शरीयत ने इसको हक दिया था, और हक के अंदर औरत अपने आप को खावन से रोके तो फिर तो नफका देना पड़ता है। कहते हैं ये इसी तरह है जैसे खावन महरे मुअज्जल अदा न करे तो औरत अपने आप को खावन से रोक सकती है, और इसके बावजूद खावन को नफका देना पड़ेगा। अगरचे औरत जो है खावन को सोहबत नहीं करने दे रही लेकिन फिर भी खावन को नफका देना पड़ेगा क्योंकि उसने जो खावन से अपने आप को रोका है वो हक के तौर पर रोका है, वो हक के तौर पर उसने रोका है, ना हक तौर पर नहीं रोका, उसमें नफका मिलेगा। तो कहते हैं वबी खिलाफी मा इदा जा अतिल फुरकतु मिन क़िबलिहा बिगैरी मासियतिन, और बखिलाफ उस सूरत के जब जुदाई औरत की जानिब से आए बिगैरी मासियतिन बगैर मासियत और गुनाह के, का खियार इल इत्क, जैसे कि खियार इत्क है, व खियार इल बुलूगी और खियार बुलूग है, व तफरीक लि अदमिल कफाअति, और जैसे कि जुदाई है अदम कफाअत की वजह से। भाई ये बात पीछे आप पढ़ चुके हैं जहां कफात का बाब आया था, आपने पढ़ा कि इंदल अहनाफ आकिल बालिग औरत अपना निकाह अपनी मर्जी से कर सकती है चाहे वली इस पर राजी हो या राजी ना हो। गई और अइमा के नजदीक तो औरत अपना निकाह खुद नहीं कर सकती लेकिन इंदल अहनाफ आजाद आकिल बालिग औरत अपना निकाह खुद कर सकती है। अलबत्ता यह शर्त है कि औरत जिसके साथ निकाह करे वो मर्द इनके हम पल्ला होना चाहिए भाई, खानदान में भी और पेशे वगैरह के अंदर भी वो मर्द इस औरत के खानदान के हम पल्ला और बराबर का होना चाहिए। और वहां आपको बतलाया था साहिबे हिदाया ने कि जाहिर रिवायत में तो यह आया है, जाहिर रिवायत में, कि अगर औरत गैर कुफ के अंदर निकाह कर ले, यानी अपने हमपल्ला लोगों में निकाह नहीं किया बल्कि अपने से कमतर लोगों के अंदर औरत ने निकाह किया है, तो जाहिर रिवायत यह है कि औरत के जो अवलिया हैं वो एतराज कर सकते हैं और काजी के पास जाकर जुदाई करवा सकते हैं, वो एतराज कर सकते हैं और काजी के पास जाकर जुदाई करवा सकते हैं। वजह यह कि यह उनके लिए ताने का सबब बन जाएगा। भाई ये तो हमेशा जहां किसी से कोई बात होगी लोग इनको ताने देंगे कि तुम्हारी बेटियां तो इतने छोटे छोटे खानदानों में तुमने उनकी शादी की हुई है भाई। तो लिहाजा अवलिया को शरीयत ने हक दिया कि वो काजी के पास जाकर ये जुदाई करवा सकते हैं। तो ये जो जुदाई आई है अदम कफात की वजह से, ये जुदाई औरत के अवलिया की वजह से आई है, तो यूं कहो ये जुदाई औरत की तरफ से आई है। किसकी तरफ से? औरत की तरफ से आई है। लेकिन फिर भी अगर ये खावंद इस औरत के साथ सोहबत कर चुका है तो इद्दत के दौरान इस औरत का नफका भी इस खावंद के जिम्मे होगा, क्योंकि जुदाई अगरचे औरत की जानिब से आई है, उसके अवलिया की जानिब से आई है, लेकिन किसी गुनाह की वजह से नहीं आई, उन अवलिया को शरीयत ने यह हक दिया है भाई। तो यह तो था जाहिर रिवायत कि औरत अगर गैर कुफ में निकाह करेगी तो अवलिया एतराज कर सकते हैं। मालूम हुआ निकाह मुनाकिद हो जाएगा और अवलिया बाद में काजी के पास जाकर यह निकाह फसख करवा सकते हैं। लेकिन मैंने बतलाया था कि फतवा दूसरे कौल पर है शेखैन रहमहुमल्ला के भाई, और इसी की तरफ रुजू फरमाया था इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला ने भी। तो हमारे तीनों अइमा के नजदीक अगर औरत गैर कुफ में निकाह करेगी तो मुफ्ता भी कौल यह है कि यह निकाह मुनाकिद ही नहीं होगा। जाहिर रिवायत के मुताबिक तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा, अलबत्ता अवलिया एतराज करके जुदाई करवा सकते हैं, लेकिन मुफ्ता भी कौल के मुताबिक यहां निकाह मुनाकिद ही नहीं होगा भाई। तो साहिब हिदाया बयान फरमा रहे हैं कि अगर जुदाई औरत की तरफ से आई है लेकिन बगैर मासियत के आई है, का खियार इल्इत्क, जैसे कि खियार इत्क है, व खियार इल्बुलूग, और जैसे खियार बुलूग है, व तफरीक इलआदम इल्कफाअती, और जुदाई आदम कफात की वजह से, तो इन तमाम सूरतों में औरत को नफका मिलेगा। लिअन्नहा हबसत नफ्सहा बिहक्किन, इसलिए क्योंकि औरत ने अपने आप को रोका है, बिहक्किन हक में, इसको शरीयत ने हक दिया है। वज़ालिका ला युस्कितुन नफकता, और हक की वजह से औरत का अपने आप को रोकना, ला युस्कितुन नफकता, ये नफके को साकित नहीं करता। कमा इदा हबसत नफसहा लिस्तीफा इल महरी, जैसे कि औरत अपने आप को रोक ले महर को वसूल करने के लिए, जैसे औरत महर को, महर मुअज्जल को वसूल करने के लिए अपने आप को रोक ले, तो भी खावंद पर नफका वाजिब होता है क्योंकि उसने हक के अंदर अपने आप को रोका है। तो यहां पर भी इन सूरतों में भी औरत के लिए नफका होगा भाई। आगे देखिए, वइन तल्लकहा सलासन सुम्मर्तद्दत वलियाज़ु बिल्लाहि सकतत नफकतुहा वइन मक्कनति बन ज़ौजिहा मिन नफ्सिहा फलाहन नफका। दूसरी सूरत भाई, खावंद ने बीवी को तीन तलाकें दे दी और अब इद्दत के दौरान का नफका खावंद के जिम्मे है, लेकिन इस दौरान औरत मुर्तद हो गई, तो क्या अब इसका भी नफका होगा खावंद के जिम्मे? कहते हैं नहीं, अगर यह मुर्तद हो गई तो इस सूरत में खावंद के जिम्मे इसका नफका नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में अगर खावंद ने बीवी को तीन तलाकें दे दी और तलाकें मिलने के बाद अब इस औरत ने खावंद के बेटे से गलत ताल्लुक कायम कर लिया, तो इस औरत को नफका मिलेगा भाई, इस औरत को नफका मिलेगा। वजह यह कि यहां पर यह जो इस औरत ने खावंद के बेटे से गलत ताल्लुक कायम किया है, यहां जुदाई औरत की तरफ से नहीं आई क्योंकि उससे पहले ही खावंद तीन तलाकें दे चुका है, तो जुदाई किसकी तरफ से आई है? खावंद की तरफ से आई है, और खावंद की तरफ से जुदाई आए तो इद्दत के अंदर का नफका खावंद के जिम्मे वाजिब होता है। तो यहां पर औरत के गुनाह का जुदाई में दखल नहीं है भाई। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वह इन तल्लकहा सलासन, और अगर खावन ने बीवी को तीन तलाकें दे दी, सुम्मर तद्दत वल अयाजु बिल्लाह, और फिर अल अयाजु बिल्लाह यह औरत मुर्तद हो गई, सकतत नफकतुहा, तो इस मुर्तदा का नफका साकित हो जाएगा, वह इम मक्कनती बना ज़ौजिहा मिन नफसिहा, और अगर इस औरत ने खावन के बेटे को कुदरत दे दी अपनी जात पर, यानी उसे गलत ताल्लुक कायम कर लिया तीन तलाकों के बाद, फलाहन नफकातु, तो इस औरत के लिए नफका होगा, यानी इद्दत के दौरान नफका इसका खावन के जिम्मे है। माना भाई देखो मतन के अंदर ये जो दूसरा मसाला जिक्र किया, वह इम मक्का नती बना ज़ौजिहा मिन नफसिहा फलाहन नफका, यहां तीन तलाकों की कैद जिक्र नहीं, यहां तीन तलाकों की कैद जिक्र नहीं, लेकिन चंद लफज कबल इस मतन के शुरू में वह इन तल्लकहा सलासन की कैद आई थी, तो चूंकि वहां एक दफा मतन में तीन तलाकों का जिक्र आ गया था इसलिए यहां पर दोबारा जिक्र नहीं किया, वरना यहां भी यह कैद मलहूज है भाई कि तीन तलाकों के बाद इसने खावंद के बेटे से गलत ताल्लुक कायम किया है, तो उसी को अब साहिब हिदाया बयान फरमा रहे कि माना हूं, कहते हैं इस कौल का माना यह है, मक्कनत बाद तलाकी, कि इस औरत ने खावंद के बेटे को कुदरत दी है तलाक के बाद, तो जुदाई खावंद की तरफ से आई है, तो इसके लिए नफका होगा। क्यों? कहते हैं लि अन नलफुर कता तस्बुतु बित तलकात इस सलासी, इसलिए क्योंकि ये जुदाई जो है ये तीन तलाकों की वजह से साबित हुई है, वला अमला फीहा लिर्रिद्दती व तमकीनी, और इसके अंदर मुर्तद होने और खावंद के बेटे को कुदरत देने का कोई अमल नहीं। यहां जो जुदाई आई है वो किसकी तरफ से है? खावंद की तरफ से, कि उसने तीन तलाकें दी हैं, उसके बाद औरत मुर्तद हुई है या उसके बाद उसने खावंद के बेटे से गलत ताल्लुक कायम किया है, तो औरत के अमल का जुदाई में कोई दखल नहीं। तो सवाल पैदा होता है कि भाई फिर जब औरत का जुदाई के अंदर कोई अमल दखल नहीं है तो फिर तो दोनों के लिए नफका होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुर्तदा के लिए नफका नहीं होगा और दूसरी औरत के लिए नफका होगा, तो उसकी वजह आगे साहिब हिदाया बतलाएंगे। कहते हैं वजह यह कि मुर्तदा जो है उसको तो कैद में डाल दिया जाएगा यहां तक कि वो फिर इस्लाम की तरफ लौटाए या कैद ही में उसकी मौत वाके हो जाए, तो चूंकि मुर्तदा को तो कैद में डाल दिया जाएगा, वो महबूसा हो गई, और महबूसा औरत का नफका खावन के जिम्मे नहीं होता। जो औरत कैद में है उसका नफका खावन के जिम्मे नहीं होता, लिहाजा इसलिए मुर्तदा का नफका खावन के जिम्मे नहीं होगा क्योंकि इसको कैद में डाल दिया जाएगा, जबकि दूसरी औरत जो है उसको तो कैद में नहीं डाला जाएगा भाई, उसको तो कैद में नहीं डाला जाएगा, लिहाजा उसका नफका खावन के जिम्मा होगा भाई। तो कहते हैं वला अमला फीहा लिर्रिद्दती व तमकीनी, और इस जुदाई के अंदर मुर्तद होने और खावन के बेटे को कुदरत देने का कोई अमल नहीं है, इल्ला अन्नल मुर्तद्दता तुहबसु हत्ता ततूबा, मगर यह कि मुर्तद्दा जो है उसको कैद में डाला जाता है यहां तक कि वह तौबा कर ले, वला नफकता लिल महबूसती, और वह औरत जिसको कैद में डाला गया हो उसके लिए नफका नहीं होता, वल मुमक्किनतु ला तुहबसु, और वह औरत जिसने खावंद के बेटे को कुदरत दी है ला तुहबसु, उसको कैद में नहीं डाला जाता तो उसके लिए नफका होगा, फलिहादा यकउल फर्कु, तो इससे फर्क वाके हो गया, दोनों में फर्क आ गया। तो मालूम हुआ कि यहां पर यह औरत जिसको खावन ने तीन तलाकें दी हैं और यह फिर उसके बाद मुर्तदा हुई है, इसका नफका खावन के जिम्मे नहीं है क्योंकि इसको कैद में डाला जाएगा, लेकिन याद रखना अगर इसको कैद में न डाला गया फिर इसके लिए भी नफका होगा, इसलिए क्योंकि यहां पर मुर्तद होने और मासियत की वजह से जुदाई नहीं आई बल्कि उससे पहले ही तीन तलाकों की वजह से जुदाई आ चुकी है, तो अगर यह मुर्तदा जो है इसको कैद में न डाला गया तो फिर इसके इद्दत का नफका भी खावन के जिम्मे होगा भाई। आगे देखिए भाई, फसलुन व नफकतुल औलाद सिगार अलल अब ला युशारिकुहू फीहा अहदुन कमा ला युशारिकुहू फी नफकति ज़ौजा, भाई जिस तरह बीवी का नफका सारा का सारा वो खावंद के जिम्मे होता है, खावंद को अदा करना पड़ता है, इसी तरह जो नाबालिग औलाद हो उसका भी सारा खर्चा बाप के ऊपर आएगा भाई, उसमें कोई और रिश्तेदार उसके साथ शरीक नहीं होगा भाई। तो कहते हैं वह नफकतुल औलाद सिगारी अलल अब, और नाबालिग औलाद का नफका बाप पर है, ला युशारिकुहू फीहा अहदुन, कोई एक भी उसके साथ इस नफके में शरीक नहीं होगा, कमा ला युशारिकुहू फी नफकति ज़ौजा, जैसे कि बीवी के नफके में उसके साथ कोई शरीक नहीं होता, लिकौलिही ताला, अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से दलील जिक्र फरमा रहे हैं। भाई बीवी के नफके की बात पीछे गुजर चुकी है, अब नाबालिग औलाद के नफके को साहिब हिदाया बयान फरमा रहे हैं, तो दलील जिक्र फरमाते हैं, कहते हैं लिकौलिही ताला, अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, व अलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना, मौलूद लहू भाई वो शख्स जिसके लिए बच्चों को जन्म दिया गया है, मौलूद वो बच्चा जिसको जन्म दिया गया है, तो मौलूद लहू जिसके लिए बच्चे को जन्म दिया गया यानी बाप मुराद है। तो कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वह अलल मौलूद लहू, और बाप पर वाजिब है रिज़्क़ुहुन्ना, इन औरतों का रिज़्क, बाप पर इन औरतों का रिज़्क यानी इन बच्चों की माओ का रिज़्क यानी इस आदमी की जो बीवी है जिसने इस बच्चे को जन्म दिया है, तो इन बीवियों का रिज़्क खावन पर लाजिम है। तो सवाल पैदा होता है कि यहां पर मसला जिक्र हो रहा है नाबालिग औलाद के नफके का, और साहिब हिदायत जो दलील जिक्र फरमा रहे हैं उसमें तो बीवी के नफके का जिक्र है, वअलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना, और बच्चे के बाप पर इन औरतों का रिज़्क है। भाई तो उलमा फरमाते हैं कि जब इस आयत से इन बीवियों का यानी बच्चों की माओ का नफका साबित हो रहा है तो बच्चे का नफका बतरीके औला इससे साबित होगा। वजह यह कि ये जो बीवियों का नफका है वो इस औलाद की वजह से साबित हो रहा है, जब औलाद की वजह से बीवी का नफका साबित हो रहा है तो खुद औलाद का नफका बतरीके औला खावंद के यानी बाप के जिम्मे होगा। भाई देखिए इस आयत के अंदर आया वअलल मौलूद लहू, कुरान में अल्लाह ने यह नहीं फरमाया व अलल अबी रिज़्क़ुहुन्ना के बाप पर इनका रिज़्क है, बल्कि क्या जिक्र फरमाया व अलल मौलूद लहू, और मौलूद लहू यह मुश्तक है। भाई मौलूद कौन सा सीगा है, इसमें मफ़ऊल है, यह मुश्तक का सीगा है। आप जानते हैं मसदर जो है वो मुश्तक मिनहू है, और ये सिफत के सीगे और फेल वगैरह ये सब मुश्तकात हैं। भाई तो याद रखो जब भी मुश्तक पर कोई हुक्म लगाया जाए तो वहां उस हुक्म की इल्लत का भी पता चल जाता है जी। जब भी किसी मुश्तक पर कोई हुक्म लगाया जाए तो वहां उस हुक्म की इल्लत का भी पता चल जाता है, यानी वो ही मुश्तक मिनहू उसकी इल्लत होता है जी। तो ज़ाब्ता क्या हुआ कि जब भी मुश्तक पर कोई हुक्म लगाया जाए तो उस हुक्म की इल्लत वो मुश्तक मिनहू होता है, यानी वो मस्तर जो है वो उसकी इल्लत है। भाई मसलन देखो मैं आपसे कहता हूं अकरमतुल आलिमा, मैंने उस आलिम का इकराम किया जी। तो देखो मैंने इकराम का हुक्म लगा दिया आलिम पर कि मैंने आलिम का इकराम किया है, तो इससे इस इकराम की इल्लत का भी पता चल गया, मालूम हुआ ये इकराम मैंने क्यों किया है उसके इलम की वजह से। तो इलम यानी जो मुश्तक मिनहू है वो इस हुक्म की इल्लत है। भाई इसके बजाय अगर मैं यूं कह देता अकरम तू जैदन, मैंने जैद का इकराम किया है, तो अब आपको बात का तो पता चल गया कि मालूम हुआ ये कहने वाले ने जैद का इकराम किया है, लेकिन आपको वजह का पता ना चलता कि जैद का इकराम क्यों किया है, उसकी वजह क्या है उसका पता न चलता। लेकिन जब मुश्तक पर कोई हुक्म लगाया जाता है तो वहां उस हुक्म की इल्लत का भी पता चल जाता है। अकरमतुल आलिमा, मैंने उस आलिम का इकराम किया, मालूम हुआ इकराम की इल्लत जो है वो उस आदमी का इलम है। भाई ये इसी तरह है जैसे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ अयदियहुमा, अस्सारिकु वस्सारिकतु चोरी करने वाला मर्द और औरत जो हैं फक्तऊ अयदियहुमा उनके हाथ काट दो। तो यहां अस्सारिक और अस्सारिका ये इसमें फाइल हैं भाई, सिफत के सीगे हैं, मुश्तक हैं भाई, और इन पर हुक्म लगाया जा रहा है कि इनके हाथ काट दिए जाएं, और मुश्तक पर जब भी कोई हुक्म लगाया जाए तो उसकी इल्लत मुश्तक मिनहू होता है। मालूम हुआ इनका हाथ क्यों काटा जाएगा, चोरी की वजह से, तो ये सरीका जो है वो इसकी इल्लत है भाई। और इसी तरह कुरान में अल्लाह फरमाते हैं अज़ानियतु वज़ानी फजलिदु कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा, कि जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द, इनमें से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। तो यहां पर अज़ानियतु वज़ानी, ये इसमें फाइल के सीगे हैं यानी मुश्तक हैं, और मुश्तक पर 100 कोड़े लगाने का हुक्म दिया जा रहा है। मालूम हुआ इसकी इल्लत क्या है, ये मुश्तक मिन्हु इसकी इल्लत है यानी जिना, जिना की वजह से अल्लाह ने इनको 100 कोड़े लगाने का हुक्म दिया। तो ज़ाब्ता क्या हुआ कि मुश्तक पर जब भी कोई हुक्म लगाया जाए तो उसके इल्लत मुश्तक मिन्हु होता है। तो यहां पर इस आयत में देखिए, वह अलल मौलूद लहू रिस्क हुन्ना, और वो शख्स जिसके लिए बच्चे को जन्म दिया गया है उस पर इन औरतों का रिजक है। तो मौलूद लहू, ये जो मुश्तक है, इस पर हुक्म लगाया गया कि इस पर इन औरतों का रिजक है भाई। और मुश्तक पर जब कोई हुक्म लगाया जाए तो उसकी इल्लत मुश्तक मिन्हु होता है। मालूम हुआ वो बच्चा जो है वो इल्लत है इन माओं के रिजक का, वो सबब है इन माओ के रिजक का। तो जब बच्चे की वजह से माओ का रिजक वाजिब हो रहा है तो बच्चों का अपना रिजक बतरीके औला बाप पर वाजिब होगा। दलील समझ में आ गई। या इसी को दूसरे लफ्जों में यूं भी बयान किया जा सकता है कि जैसे बीवी के अंदर इंसान के साथ कोई शरीक नहीं होता तो उसी खावंद पर ही उस बीवी का सारा खर्चा आता है, इसी तरह ये जो औलाद है, औलाद के अंदर भी कोई शख्स उसके साथ शरीक नहीं तो औलाद का सारा खर्चा भी उसी शख्स पर आएगा। जैसे औलाद और बीवी में मुशारकत नहीं हो सकती तो इसी तरह इनके नफके में भी मुशारकत नहीं होगी भाई। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं लिकौली ही ताला, अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, वअलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना, और वो शख्स जिसके लिए बच्चे को जन्म दिया गया है उस पर इन औरतों का रिजक है यानी इन बच्चों की माओ का रिजक है, वल मौलूद लहू हुवल अबू, और मौलूद लहू जो है वो बाप है, वो बाप है, वह इन कान सगीर रजी अन फलैसा अला उम्मी ही अंतु रजी आहू। अगर नाबालिग औलाद जो है वो दूध पीता बच्चा है तो क्या मां पर वाजिब है उस बच्चे को दूध पिलाना? तो आपको बतलाएंगे कि कजा अन मां पर वाजिब नहीं है, यानी मां बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती और खावन काजी के पास चला गया कि काजी साहब इस औरत को हुक्म दें ये अपने बच्चे को दूध पिलाए, तो याद रखिए काजी जबरन इस औरत पर दूध पिलाने को वाजिब नहीं कर सकता, क्योंकि ये मां है भाई, मां तो सबसे ज्यादा अपने बच्चे पर शफकत करने वाली है, इसके बावजूद ये बच्चे को दूध नहीं पिला रही, मालूम हुआ इसको कोई उजर होगा भाई, तो इसलिए कजाअन इस औरत पर दूध पिलाने को वाजिब नहीं किया जा सकता। हां अलबत्ता दयानतन इस औरत पर वाजिब है, यानी ये इसका और अल्लाह का मामला है, दयानतन इस औरत पर वाजिब है कि अपने बच्चे को दूध पिलाए। कहते हैं वह इनकान सगीर रजीअन, रजीअ कहते हैं दूध पीता बच्चा, वह इनकान सगीर रजीअन, और अगर वो नाबालिग जो है वो दूध पीता बच्चा है, फलैसा अला उम्मी ही अंतु रजीआहू, तो उसकी मां पर वाजिब नहीं है कि उसको दूध पिलाए, यानी कजाअन वाजिब नहीं है, दयानतन उस पर वाजिब है। तो कजाअन उस औरत पर दूध पिलाना वाजिब नहीं है, लिमा बैयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दी कि अन्नल किफायत अलल अबी, कि किफायत बाप पर है, यानी बच्चे की और उसकी मां की जरूरियात पूरी करना ये किसके जिम्मे है, बाप के जिम्मे है, लिहाजा बाप जैसे अपनी बीवी के नफके का इंतजाम करेगा बच्चे के नफके का भी इंतजाम करेगा, और बच्चे का नफका यहां ये तो दूध पीता बच्चा है तो इसके लिए किसी औरत का इंतजाम करेगा जो इस बच्चे को दूध पिलाएगी, और बाप जो है उस औरत को उजरत देगा, तो ये जो उजरत देगा उस दूध पिलाने वाली को ये नफके के दर्जे में है। जैसे खावंद के जिम्मे बीवी का नफका है इसी तरह इस बच्चे का नफका भी बाप के जिम्मे है, ये बाप जो है उस दूध पिलाने वाली को जो उजरत देगा ये बच्चे के नफके के दर्जे में है। तो ये माना है कि मां पर बच्चे को दूध पिलाना कजाअन वाजिब नहीं, लिमा बैयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दी कि अन्नल किफायत अलल अबी, के किफायत जो है बाप पर है, तो इनकी किफायत करना, इनको वो चीजें मुहैया करना जो इनके लिए काफी हो जाएं, वो बाप के जिम्मे हैं। तो कहते हैं लिमा बैयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दी कि अन्नल किफायत अलल अबी, कि इनकी किफायत बाप पर है, वह उजरतुर रज़ाइकन नफकती, और दूध पिलाने की जो उजरत है वो नफके की तरह है। वली अन्नहा आसाहा ला तकदीरु अलैही, और इसलिए क्योंकि शायद ये जो मां है ये दूध पिलाने पर कादिर न हो, लिउज़रिन बिहा, अपने किसी उजर की वजह से, यानी इसके साथ कोई उजर हो जिसकी वजह से ये दूध नहीं पिला सकती। तो कहते हैं वली अन्नहा आसाहा ला तकदीरु अलैही लिउज़रिन बिहा, इसलिए क्योंकि शायद ये मां जो है ये दूध पिलाने पर कादिर न हो अपने किसी उजर की वजह से, फला माना लिल जबरी अलैही, तो कोई सबब नहीं है इस दूध पिलाने पर मजबूर करने का, यानी इसको काजी के जरिए मजबूर करना दूध पिलाने पर, इसका कोई सबब नहीं है भाई। तो कहते हैं फला माना लिल जबरी अलैही, तो कोई सबब नहीं है लिल जबरी अलैही इस दूध पिलाने पर मजबूर करने का। वकील फी तावील कौलिही ताला, और कहा गया है अल्लाह ताला के इस कौल की तावील में, तावील का यहां तर्जमा करेंगे तफसीर भाई। तो कहते हैं वकील फी तावील कौलिही ताला, और अल्लाह ताला के इस कौल की तफसीर में कहा गया है, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं ला तुज़ार वालिदतुम बिवलदिहा, कि बच्चे की मां को तकलीफ न दी जाए, बिवलदिहा उसके बच्चे की वजह से। कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं कि बच्चे की मां को बच्चे की वजह से तकलीफ न दी जाए, क्या माना इसका? तो आगे तफसीर बयान कर रहे हैं बी इल्जामी हल इर्ज़ा, कि इस औरत पर दूध पिलाने को लाजिम कर दिया जाए, मा कराहतिहा, इसके नापसंद करने के बावजूद। यह तो दूध नहीं पिलाना चाहती लेकिन काजी जबरन उस पर दूध पिलाने को वाजिब कर दे, तो इसके अंदर देखो मां को तकलीफ दी जा रही है बच्चे की वजह से, और इससे तो कुरान में अल्लाह ने मना फरमाया है। बात समझ में आ गई, फिर तर्जमा देख लीजिए वकील फी तावील कौलिही ताला, और अल्लाह ताला के इस कौल की तावील में और तफसीर में कहा गया है ला तुजार रवालिदतुम बिवलदिहा, कि बच्चे को मां की वजह से तकलीफ न दी जाए, अल्लाह के इस कौल की तफसीर में कहा गया है बी इल्जामी हल इर्ज़ा मा कराहतिहा, कि औरत के नापसंद करने के बावजूद उस पर दूध पिलाने को लाजिम करना, इससे यह मुराद है, इससे यह मुराद है भाई। वहां दल लदी जकरना बयान उल हुक्मी, और ये जो हमने जिक्र किया ये हुक्म का बयान था, हमने आपको मसाला बतला दिया कि जब मां बच्चे को दूध न पिलाना चाहे तो काजी उसको जबरन मजबूर नहीं कर सकता भाई। तो ये कहते हैं हमने हुक्म बयान फरमाया है, यानी कजाअन इस औरत को मजबूर नहीं किया जा सकता, अलबत्ता दयानतन इस औरत पर वाजिब है भाई। तो कहते हैं वहादल लदी जकरना बयान उल हुक्मी, और ये जो हमने जिक्र कर दिया कि औरत को मजबूर नहीं किया जाएगा, बयान उल हुक्मी ये हुक्म का बयान था। वदालिका इदा कान यूजदु मन तुर्ज़िउहू, और ये उस वक्त है जब ऐसी औरत पाई जाए जो इस बच्चे को दूध पिलाए, जब कोई और औरत मौजूद है जो बच्चे को दूध पिला सकती है तो उस वक्त मां पर वाजिब नहीं है। अम्मा इदा कान ला तूजदु मन तुर्ज़िउहू, और बाकी उस वक्त जब कोई और औरत न पाई जाए जो इस बच्चे को दूध पिलाए, तो तुजबरुल उम्मु अलल इर्ज़ाई, तो फिर मां को मजबूर किया जाएगा बच्चे को दूध पिलाने पर, सियानतन लिस्सबी, बच्चे की हिफाजत के लिए, यानी ज़याई ज़ाया होने से, ज़या ज़ाद के फतहा के साथ है भाई, ज़ा यज़ीउ ज़यान का माना है जाया होना, तो उस सूरत में मां को मजबूर किया जाएगा दूध पिलाने पर, जब कोई और औरत दूध पिलाने वाली नहीं है, या और औरत तो है दूध पिलाने वाली लेकिन बच्चा और किसी का दूध पी ही नहीं रहा, तो अब बच्चे को हलाकत से बचाने के लिए अब मां को मजबूर किया जाएगा कि वो बच्चे को दूध पिलाए। यह माना है कि अम्मा इदा कान ला तूजदु मन तुर्ज़िउहू, और जिस वक्त ऐसी औरत न पाई जाए जो इस बच्चे को दूध पिलाए, तो तुजबरुल उम्मु अलल इर्ज़ाई, तो मां को मजबूर किया जाएगा दूध पिलाने पर, सियानतन लिस्सबी यानी ज़याई, बच्चे को जाया होने से बचाने के लिए। قال ويستاجر الاب من ترزعه عندها, इस काला से मुराद साहिब कुदूरी हैं, قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ویستاجر الابو استاجر یستاجر کے معنی ہے اجرت پر رکھنا ویستاجر الابو من ترزعه اور باپ اجرت پر رکھے گا اس عورت کو جو اس بچے کو دودھ پلائے عندها اس بچے کی ماں کے پاس باپ کسی عورت کو اجرت پر رکھے گا جو اس کی ماں کے پاس رہ کر اس بچے کو دودھ پلائے بھائی تو کہتے ہیں ویستاجر الاب من ترزعه عندها اور باپ جو ہے اجرت پر رکھے گا اس عورت کو جو اس بچے کو دودھ پلائے عندها اس بچے کی ماں کے پاس اما استیجار الاب فلان الاجر علیہ بھائی باپ کیوں اجرت پر رکھے گا اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کیونکہ بھائی اجرت باپ کے ذمے ہے کیونکہ یہ اجرت کس کے درجے میں ہے نفقے کے درجے میں ہے اور بچے کا نفقہ باپ کے ذمے ہے تو کہتے ہیں ام استیجار الابی اور باقی باپ کا اجرت پر رکھنا فلی ان الاجر علیہ اس لیے کیونکہ اجرت باپ کے ذمہ ہے وقولہ عندہا بھائی متن میں صاحب قدوری نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ عورت بچے کو دودھ پلائے گی عندہا بچے کی ماں کے پاس رہ کر بچے کی ماں کے پاس رہ کر دودھ پلائے گی تو یہ عندہا کی قید کا کیا معنی صاحب ہدایہ بتلائیں گے معنی یہ ہے اگر ماں بھی یہی چاہتی ہے ماں کہتی ہے میں دودھ تو نہیں پلا سکتی لیکن بچہ میرے پاس ہی رہے تو خاوند پر لازم ہے ایک عورت کا انتظام کرے جو ماں کے پاس رہ کر بچے کو دودھ پلائے تو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ عِنْدَهَا اور صاحب قدوری کا قول جو عِنْدَهَا آیا متن کے اندر معنی اس کا یہ ہے اِذَا اَرَادَتْ ذَلِكَ جب ماں بھی اس کا ارادہ کرے کہ بچہ میرے پاس ہی رہے لِأَنَّ الْحِجْرَ لَهَا اس لیے کیونکہ پرورش اور تربیت جو ہے وہ ماں کے لیے ہے پرورش کا حق کس کا ہے ماں کا ہے بھائی لڑکا ہو تو 7 سال تک اور لڑکی ہو تو 9 سال تک اس کی پرورش کا حق ماں کو ہے بھائی تو یہ معنی ہے لِأَنَّ الْحِجْرَ لَهَا اس لیے کیونکہ پرورش اور تربیت جو ہے وہ ماں کا حق ہے وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا وَهِيَ زَوْجَتُهُ أَوْ مُعْتَدَّتُهُ لِتُرْزِعَ وَلَدَهَا لَمْ تَجُزْ صورت یہ بھائی ماں بچے کو دودھ خود پلانا چاہتی ہے لیکن خاوند سے اجرت کا مطالبہ کرتی ہے کہ تم اس کے باپ ہو نفقہ تمہارے ذمے ہے لہذا میں دودھ تو پلاؤں گی لیکن دودھ پلانے کی مجھے اجرت دو گے جی یا یہ منکوحا نہیں ہے خاوند اس کو طلاق دے چکا ہے جی اور عدت کے دوران جو ہے وہ عورت کہتی ہے کہ عدت کے دوران بھی جو میں دودھ پلاؤں گی تو تمہیں اجرت دینا پڑے گی جی یاد رکھو آگے چل کر صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ جب عدت گزر جائے جی تو پھر وہ عورت اجنبیہ بن گئی اس کے بعد اگر وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ خاوند سے اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے لیکن منکوحہ ہو یا عدت کے دوران جو عورت ہے وہ اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتی اس کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا وَهِيَ زَوْجَتُهُ أَوْ مُعْتَدَّتُهُ اور اگر خاوند نے اجرت پر رکھ لیا اس حال میں کہ یہ اسی کی بیوی ہے او معتدته یا یہ اسی خاوند کی معتدہ ہے یعنی خاوند نے اس کو طلاق دی ہے اور یہ عدت گزار رہی ہے تو خاوند نے اس کو اجرت پر رکھا لترزع ولدها تاکہ یہ اس کی اولاد کو دودھ پلائے لم تجوز تو یہ جائز نہیں معلوم ہوا اپنی منکوحہ اور اپنی معتدہ کو دودھ پلانے کی اجرت دینا جائز نہیں ہے بھائی تو کہتے ہیں لم تجوز یہ جائز نہیں ہے لِأَنَّ الْإِرْزَاعَ مُسْتَحَقٌ عَلَيْهَا دِيَانَةً بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قضاءً تو ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں لیکن دیانتاً ماں پر دودھ پلانا واجب ہے اب وہی ذکر کر رہے ہیں کہ جب ماں پر دودھ پلانا دیانتاً واجب ہے تو یہ اس کی اجرت نہیں لے سکتی قضاءً ہم نے واجب نہیں کیا تھا وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے ماں کو کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے وہ دودھ نہیں پلا رہی وہ بچے کی ماں ہے اس کی شفقت سب سے زیادہ ہے بچے پر وہ پھر بھی بچے کو دودھ نہیں پلا رہی معلوم ہوا کوئی عذر ہے کوئی مجبوری ہے بھائی لیکن اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے اجرت دو پھر میں دودھ پلاؤں گی اس کا مطلب ہے اس کو کوئی عذر وغیرہ نہیں ہے جب عذر وغیرہ نہیں ہے تو اب اس عورت پر بچے کو دودھ پلانا لازم ہے بھائی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِرْضَاعَ مُسْتَحَقٌ عَلَيْهَا دِيَانَةً مُسْتَحَقٌ کا ترجمہ یہاں کریں گے واجب کے لِأَنَّ الْإِرْضَاعَ اس لیے کیونکہ دودھ پلانا مُسْتَحَقٌ عَلَيْهَا دِيَانَةً وہ دیانتاً اس ماں پر واجب ہے قال الله تعالى اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والوالدات يرضعن اولادهن اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ماں پر بچوں کو دودھ پلانا واجب ہے, لیکن ہم نے قضاءً واجب نہیں کیا تھا, دیانتاً واجب ہے لیکن قضاءً واجب نہیں, کیونکہ اوپر ذکر ہو گیا. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لا تزار والدتم بولدیہا, کہ ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے. بھائی تو کہتے ہیں قال اللہ تعالی, اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن اور مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں الا انہا عذرت, مگر یہ کہ اس عورت کو معذور سمجھا گیا, اس کو معذور قرار دیا گیا لاحتمال عجزہا, اس کے عاجز ہونے کے احتمال کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے یہ دودھ پلانے سے عاجز ہو بھائی, اس لیے یہ دودھ نہیں پلا رہی. فَإِذَا أَقْدَمَتْ عَلَيْهِ بِالْأَجْرِ, أَقْدَمَ يُقْدِمُ اقدام کا معنی ہے پیش قدمی کرنا. فَإِذَا أَقْدَمَتْ عَلَيْهِ بِالْأَجْرِ, تو جب اس عورت نے دودھ پلانے پر پیش قدمی کی ہے بِالْأَجْرِ اجرت کے بدلے, ماں خود تیار ہو گئی کہ اجرت مجھے دو گے تو میں دودھ پلانے کو تیار ہوں, معلوم ہوا اس کو کوئی عذر وغیرہ نہیں. جب کوئی عذر نہیں تو اب اس پر دودھ پلانا واجب ہو گیا بھائی. کہتے ہیں فَإِذَا أَقْدَمَتْ عَلَيْهِ بِالْأَجْرِ, جب ماں نے دودھ پلانے پر پیش قدمی کی اجرت کے بدلے ظہارت قدرتها, تو ظاہر ہو گئی اس ماں کی قدرت کہ یہ دودھ پلانے پر قادر ہے. فَكَانَ الْفِعْلُ وَاجِبًا عَلَيْهَا, تو یہ دودھ پلانے کا فعل اس عورت پر واجب ہے. فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ, لہذا اس کے لیے اجرت لینا جائز نہیں. بھائی جب دودھ پلانا اس پر واجب ہے تو پھر یہ اجرت کیسے لے سکتی ہے بھائی, یہ تو اسی کے ذمے ہے. بات سمجھ میں آ گئی, تو یہ معنی ہے فکان الفعل واجبا علیہا, تو یہ دودھ پلانے کا فعل اس عورت پر واجب ہے. فلا يجوز اخذ الاجر علیہ, لہذا اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے. وہذا فی المعتدۃ عن طلاق رجعی روایتا واحدہ, بھائی یاد رکھیے, آگے صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ ہم نے آپ کو اوپر متن میں بتلا دیا کہ اپنی بیوی کے لیے دودھ پلانے کی اجرت لینا بھی جائز نہیں اور معتدہ کے لیے بھی اجرت لینا جائز نہیں. اس معتدہ سے کون سی معتدہ مراد ہے, تو آپ کو بتلائیں گے کہ وہ عورت جو طلاق رجعی کی عدت گزار رہی ہو اس کے بارے میں تو ایک ہی روایت آئی ہے کہ وہ اجرت نہیں لے سکتی کیونکہ نکاح موجود ہے, نکاح موجود ہے. البتہ وہ عورت جو طلاق بائن کی عدت گزار رہی ہے یا تین طلاقوں کی عدت گزار رہی ہے اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت کے مطابق اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے لہذا وہ اجنبیہ کے مثل ہو گئی لہذا وہ اجرت لے سکتی ہے, جبکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ بھئی اگرچہ اس کو طلاق بائن دی ہے یا تین طلاقیں دی ہیں لیکن ابھی بھی نکاح کے کچھ احکام باقی ہیں, جیسے اس معتدہ کا نفقہ خاوند کے ذمے ہوتا ہے, اس کی رہائش بھی خاوند کے ذمے ہوتی ہے, اس سے کوئی اولاد پیدا ہو جائے وہ بھی خاوند کی شمار ہوتی ہے, نیز اس معتدہ کو خاوند زکات بھی نہیں دے سکتا. آپ جانتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتے, اس لیے کیونکہ ان کے مفادات مشترک ہوتے ہیں. خاوند بیوی کو اگر زکات دے گا یہ تو گویا اپنے آپ کو ہی دے رہا ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں بھائی, تو وہ زکات تو اسی کے کام آئے گی بھائی. تو یہ جو معتدہ ہے جس کو خاوند نے تین طلاقیں دی ہیں یا طلاق بائن دی ہے اس کو بھی خاوند زکات نہیں دے سکتا, اور نیز اسی طرح یہ عورت خاوند کے حق میں گواہی نہیں دے سکتی کیونکہ ان کے مفادات مشترکہ ہیں. دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ یہ تو اپنے نفع کے لیے گواہی دی جا رہی ہے, کیونکہ خاوند کا نفع بیوی کا نفع ہے اور بیوی کا نفع خاوند کا نفع ہے. تو یہ جو مبتوتہ ہے عدت کے دوران بھی بعض احکام کے اعتبار سے نکاح باقی ہے, جب نکاح باقی ہے تو اس کے لیے دودھ پلانے کی اجرت لینا جائز نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَهَذَا فِي الْمُعْتَدَّةِ عَنْ طَلَاقِ الرَّجْعِيِّنَ, اور یہ اس عورت کے بارے میں ہے جو عدت گزار رہی ہے طلاق رجعی سے روایتاً واحدتاً, اس حال میں کہ یہ ایک ہی روایت ہے. معتدہ رجعیہ کے بارے میں ایک ہی روایت ہے کہ یہ اجرت نہیں لے سکتی, اور معتدہ بائنہ کے اندر دو روایتیں ہیں, ایک روایت کے مطابق وہ اجرت لے سکتی ہے کیونکہ نکاح ٹوٹ چکا, اور دوسری روایت ہے کہ وہ بھی اجرت نہیں لے سکتی کیونکہ بعض اعتبار سے ابھی بھی نکاح باقی ہے بھائی. तो कहते हैं वहादा फिल मुअतद्दति अन तलाक इन रजईन रिवायतन वाहिदतन, ये हुक्म जो है उस औरत के बारे में है जो इद्दत गुजार रही है तलाक रजई से इस हाल में कि ये एक ही रिवायत है। लिअन्न निकाह क़ाइमुन, इसलिए क्योंकि इसके साथ निकाह अभी भी मौजूद है। वकदा फिल मबतूतति फी रिवायतिन, और इसी तरह है हुक्म मबतूता के बारे में भी एक रिवायत में। मबतूता वो औरत जिसे निकाह टूट चुका है भाई, तो कहते हैं वह कजा फिल मबतूतति फी रिवायतिन, और इसी तरह है मबतूता के अंदर भी एक रिवायत में। वफी रिवायतिन उखरा, और दूसरी रिवायत में है जाजस्ती जारुहा कि इस मबतूता को उजरत पर रखना जायज है। लिअन्न निकाह कद जाला, इसलिए क्योंकि निकाह तहकीक वो जायल हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो ये अजनबिया बन चुकी है। जब अजनबिया बन गई तो इसके लिए दूध पिलाने की उजरत लेना जायज है भाई। वजहुल उला, और पहली रिवायत की वजह, मबतूता के बारे में एक रिवायत क्या बतलाई कि वो भी उजरत नहीं ले सकती, दूसरी रिवायत बताई कि वो उजरत ले सकती है। तो पहली रिवायत के मुताबिक मबतूता भी उजरत नहीं ले सकती, अब उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वजहुल उला, पहली रिवायत की वजह यह है कि अन्नहु बाकिन फी हक बाजिल अहकामी, कि निकाह अभी भी बाज अहकाम के हक में बाकी है। तो जब निकाह बाकी है तो यह उजरत नहीं ले सकती। वला विस्ता अजा रहा वही मनकूहतुहु औ मोतदतुहु लिइरज़ा इब्निन लहू मिन गैरिहा जाज़ा। भाई साहिब हिदायत ने आपको यह तो बतला दिया कि मां अपने बच्चे को दूध पिलाने की उजरत खावंद से नहीं ले सकती जब तक वो उसकी मनकूहा है या उसकी मोतदा है। लेकिन अगर ये औरत इसी शख्स की दूसरी बीवी के बच्चे को दूध पिलाने की उजरत मांगती है, मां उसको दूध नहीं पिला सकती, अब खावंद की दूसरी बीवी जो है खावंद उसको उजरत पर रखना चाहता है, तो क्या इसके लिए उजरत लेना जायज है? कहते हैं हां, इसके लिए उजरत लेना जायज है, क्योंकि इसका अपना बच्चा होता उसको दूध पिलाना तो इसी पर वाजिब होता, तो वहां तो वो उजरत नहीं ले सकती थी, लेकिन दूसरी बीवी के बच्चे को दूध पिलाना तो इस औरत पर वाजिब नहीं है, लिहाजा उसकी उजरत ये ले सकती है भाई। कहते हैं वलविस्ता अजा रहा, और अगर खावंद ने इस औरत को उजरत पर रखा, वही मनकूहतुहु और मोतदतुहु, इस हाल में कि यह औरत इसकी मनकूहा है या इसकी मोतदा है, यानी खावंद इसको तलाक दे चुका है, अब इसको खावंद ने उजरत पर रखा, ले इरज़ा इब्निन लहू, ताकि यह औरत दूध पिलाए इस खावंद के बेटे को, मिन गैरिहा, जो इस औरत के अलावा से है यानी दूसरी बीवी से है, उसको दूध पिलाए, जाजा, तो ये जायज है, इसकी उजरत ये औरत ले सकती है। लिअन्नहु गैरु मुस्तहक़िन अलैहा, इसलिए क्योंकि इस बच्चे को दूध पिलाना ये इस औरत पर वाजिब नहीं है, तो इसकी ये उजरत ले सकती है। वह इन इन्क़ज़त इद्दतुहा फस्तअजरहा, सूरत ये भाई कि इद्दत गुजर गई, औरत बाइना हो गई, अब खावंद इसी बच्चे की मां को उजरत पर रखना चाहता है बच्चे को दूध पिलाने के लिए, तो क्या खावंद इसी औरत को उजरत पर रख सकता है? क्या ये मां जो है ये अब बच्चे को दूध पिलाने की उजरत ले सकती है? कहते हां, अब चूंकि ये बाइना हो गई, निकाह पूरे तौर पर टूट गया, अजनबिया हो गई, लिहाजा ये दूध पिलाने की उजरत ले सकती है, क्योंकि बच्चे का नफका किसके जिम्मे है? बाप के जिम्मे है, और ये दूध की उजरत भी किसके दर्जे में है? नफके के दर्जे में है, लिहाजा यहां खावन उजरत पर इस बच्चे की मां को भी रख सकता है इद्दत के गुजरने के बाद। तो कहते हैं वह इन इन कजत इद्दतुहा, और अगर इस औरत की इद्दत गुजर गई, फस्त अजारा हा, फिर खावन ने इसको उजरत पर रख लिया, यानी लि इरज़ाई वलदिहा, यानी इसके बच्चे को दूध पिलाने के लिए, जाजा, तो ये जायज है। लिअन्न निकाह कद ज़ाल बिलकुल्लियति, इसलिए क्योंकि निकाह तहकीक जायल हो गया पूरे तौर पर, निकाह खत्म हो गया पूरे तौर पर। वसारत कल अजनबियति, और ये औरत अजनबिया जैसी हो गई, तो लिहाजा अब इसको उजरत पर रखा जा सकता है। फइन क़ाल अल अबू ला अस्ताजिरुहा, सूरत मसला यह भाई कि मियां बीवी के दरमियान जुदाई आ गई और औरत ने इद्दत गुजार ली, अब इद्दत के बाद खावन जो है बच्चे के लिए उजरत पर एक औरत का इंतजाम करता है कि वह बच्चे को दूध पिलाए, जबकि दूसरी तरफ मां भी राजी है। मां कहती है कि जितनी उजरत आपने इस अजनबिया औरत को देनी है इतनी ही उजरत मुझे दे देना, मैं बच्चे को दूध पिला देती हूं। या मां बगैर उजरत के ही तैयार है कि मैं इस बच्चे को बगैर उजरत के ही दूध पिलाने पर तैयार हूं, लेकिन खावंद जो है कहते हैं नहीं, मैं तो किसी और औरत को ही रखूंगा। तो याद रखो, साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि इस सूरत में मां ज्यादा हकदार है। खावंद को यह बच्चा मां के सुपुर्द करना चाहिए। भाई कहते हैं फइन काल अल अबू, और अगर बाप ने कहा ला अस्ताजीरुहा कि मैं इस मां को उजरत पर नहीं रखूंगा, वजा अबिगैरिहा और वो ले आया मां के अलावा किसी और औरत को, फरजियतिल उम्मु बिमिस्लि अजरिल अजनबियती, तो मां राजी हो गई उस अजनबी औरत की उजरत के बराबर पर। मां राजी हो गई, जितनी उजरत इस अजनबिया को देते हो इतनी ही उजरत मुझे दे देना। और रजियत बिगैरी अजरिन, या मां राजी हो गई बगैर उजरत के ही कि मैं वैसे ही बच्चे को दूध पिला देती हूं, कानत ही अहक्का, तो ये मां ज्यादा हकदार है। खावन को बच्चा इसी के हवाले करना चाहिए। तो कहते हैं कानत ही अहक्का, तो ये मां जो है ज्यादा हकदार है, लिअन्नहा अशफकू, क्योंकि ये ज्यादा शफकत वाली है, फकान नज़रन लिस्सबी फी दफ़ इलैहा, तो इसमें बच्चे पर भी शफकत होगी इसके हवाले करने में। जब बच्चे को मां के हवाले करेंगे तो इसमें बच्चे पर भी शफकत है, मां से बढ़कर तो कोई उसका ख्याल नहीं रख सकता भाई। तो खावंद को यह बच्चा मां के हवाले ही करना चाहिए। हां, व इनिल तमसत ज्यादा तन लम युजबरी ज़ौजु अलैहा, मां अगर ज्यादा उजरत का मुतालबा करती है तो फिर इस सूरत में खावन को मजबूर नहीं किया जा सकता। काजी भी खावन को नहीं कह सकता कि यह बच्चा मां के हवाले ही करना पड़ेगा, क्योंकि मां ज्यादा उजरत का मुतालबा कर रही है भाई। कहते हैं वह इनिल तमसत ज्यादा तन, और अगर औरत ने ज्यादा का मुतालबा किया, लम युजबरी ज़ौजु अलैहा, तो खावन को इस पर मजबूर नहीं किया जाएगा, दफअन लिज़रर अनहु, खावन से नुकसान को दूर करने के लिए। भाई अगर खावन को अब भी आप मजबूर करते हैं कि बच्चा मां ही के हवाले करना पड़ेगा, तो इसमें तो बेचारे खावन का नुकसान है भाई, वो ज्यादा उजरत उसको देना पड़ेगी, लिहाजा इस वजह से खावन को मजबूर नहीं किया जाएगा। तो कहते हैं लम युजबरी ज़ौजु अलैहा, खावन को इस पर मजबूर नहीं किया जाएगा, दफअन लिज़रर अनहु, खावन से नुकसान को दूर करने के लिए। व इलैहिल इशारतु बिकौलिही ताला, और इसी बात की तरफ इशारा है अल्लाह ताला के इस कौल के जरिए, ला तुज़ार वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहू बिवलदिही। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं ला तुज़ार रवालिदतुम बिवलदिहा, कि मां को तकलीफ न दी जाए बच्चे की वजह से, वला मौलूदुल्लहू बिवलदिही, और न बाप को बच्चे की वजह से, मां और बाप को बच्चे की वजह से तकलीफ न दी जाए। अब यहां पर अगर आप बाप पर वाजिब कर देते हैं कि उजरत पर मां ही को रखना पड़ेगा, और मां तो ज्यादा उजरत का मुतालबा कर रही है, तो इसमें बाप को गोया बच्चे की वजह से तकलीफ दी जा रही है, और इससे तो कुरान में अल्लाह ने मना फरमाया है। तो कहते हैं वह इलैहि इशारतु बिकौलिही ताला, और इसी की तरफ इशारा है अल्लाह ताला के इस कौल के जरिए, ला तुज़ार वालिदतुम बिवलदिहा, ना तो मां को बच्चे की वजह से तकलीफ दी जाए, वला मौलूदुन लहू बिवलदिही, और ना बाप को बच्चे की वजह से, ऐ बि इल्जामिही लहा अक्सर मिन उजरतिल अजनबियती, ऐ बि इल्जामिही लहा, यानी बाई सूरत के बाप पर लाजिम कर दिया जाए लहा इस मां के लिए, अक्सर मिन उजरतिल अजनबियती, अजनबिया की उजरत से ज्यादा, बाप पर मां के लिए अजनबिया से ज्यादा उजरत को लाजिम करके उसको तकलीफ न दी जाए भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, ऐ बि इल्जामी ही लहा अक्सर मिन उजरतिल अजनबियती, यानी बाप पर मां के लिए अजनबिया की उजरत से जायद लाजिम करके उसको तकलीफ न दी जाए। वह नफकतु सगीर वाजिबतुन अला अबी ही व इन खालफहू फी दीनी ही। यहां से साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि बाप का दीन चाहे बच्चे के दीन से अलग ही क्यों ना हो, फिर भी नाबालिग बच्चा है तो उसका नफका बाप पर ही होगा जी। बच्चे का दीन बाप से अलग ही क्यों ना हो, फिर भी उसका नफका बाप के जिम्मे है जब तक वो बालिग नहीं होता। चुनांचे मसलन एक काफिर शख्स है और उसका नाबालिग बेटा है, वो समझदार है और दीन की बातों को समझने लगा और वो मुसलमान हो गया, लेकिन है अभी नाबालिग, तो अब बाप का दीन अलग है, बच्चे का दीन अलग है, लेकिन फिर भी इस नाबालिग का नफका बाप ही के जिम्मे है। या इसका बरअक्स हुआ, एक मुसलमान का बेटा है और वो दीन की बातों को समझता है और वो अलियाज बिल्ला मुर्तद हो गया, तो अब बच्चे का दीन अलग है, बाप का दीन अलग है, फिर भी इस नाबालिग बच्चे का नफका बाप के जिम्मे है। और याद रखना, बच्चे का इर्तेदाद और इस्लाम हमारे नजदीक सही है भाई, वो साबित हो जाएगा। बात समझ में आ गई। कहते हैं वह नफकत उस सगीरी वाजिबतुन अला अभी ही, और नाबालिग का नफका बाप पर वाजिब है। वह इन खालफहू फी दीन ही, अगरचे बाप मुखालिफ हो उससे दीन में, कमा तजिब नफकत उस ज़ौजति अला ज़ौजी, जैसे कि बीवी का नफका खावन पर वाजिब होता है। वह इन खालफत हु फी दीन ही, अगरचे वो खावन उसके मुखालिफ हो दीन में। बीवी भाई, एक शख्स मुसलमान है और वो यहूदी या ईसाई औरत से निकाह कर लेता है, तो इस औरत का नफका खावन पर वाजिब है, अगरचे मियां बीवी का दीन अलग अलग है। तो जैसे बीवी का दीन अलग होने के बावजूद उसका नफका खावन के जिम्मे होता है, इसी तरह नाबालिग औलाद का दीन मुख्तलिफ होने के बावजूद उनका नफका बाप के जिम्मे होगा। कहते हैं अमल वलदु फली इतलाकी मा तलौना, तो बच्चा जो है यानी उसका जो नफका है, फल इतला की मा तलौना, वो उस आयत के मुतलक होने की वजह से जो हमने तिलावत की, हमने पीछे आयत तिलावत की थी, हमने बतलाया था कि कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, वअलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना, के बच्चे के बाप पर इन बच्चों की माओ का नफका लाजिम है। और यहां पर मुश्तक पर हुक्म लगाया गया है, मौलूद क्या है, मुश्तक का सीगा है, तो बाप को मौलूद लहू के लफ्ज के साथ जिक्र किया गया है कुरान में, तो और मुश्तक पर जब हुक्म लगाया जाए तो उसके सबब और इल्लत वो मुश्तक मिनहू होता है। मालूम हुआ इन औरतों का रिजक बाप पर क्यों लाजिम है, बच्चे की वजह से, तो जब बच्चे की वजह से माओ का रिजक लाजिम है तो बच्चे का रिजक भी बतरीके औला लाजिम होगा भाई। और नीज ये आयत मुतलक है भाई, इसके अंदर कोई जिक्र नहीं है कि दीन का एक होना जरूरी है भाई, बच्चे का और बच्चे के बाप का दीन एक होना जरूरी हो, ये कैद यहां पर मौजूद नहीं है भाई। तो कहते हैं अम्मल वलदू, तो बच्चा जो है यानी उसका जो नफका है, फल इतलाकी मा तलौना, तो वो उस आयत के मुतलक होने की वजह से जो हमने तिलावत की, व अलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना, और बच्चे के बाप पर इन औरतों का रिजक है, अल आया वली अन्नहु जुज़्उहु फयकूनु फी माना नफ्सिही। अब अकली दलील जिक्र फरमा रहे हैं साहिबे हिदाया कि बच्चे का दीन अगरचे अलग ही क्यों ना हो, फिर भी उसका नफका बाप के जिम्मे है। कहते हैं वजह यह कि यह बच्चा बाप का जुज है भाई, और जब बाप का जुज है तो यह बाप की अपनी जात के दर्जे में हुआ, और जैसे इंसान पर अपना नफका लाजिम होता है कुफर की वजह से उस पर कोई असर नहीं पड़ता, इसी तरह इस बच्चे का नफका भी बाप पर वाजिब होगा, कुफर की वजह से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कहते हैं वली अन्नहु जुज़्उहु, और इसलिए क्योंकि यह नाबालिग जो है बाप का जुज है, फयकूनु फी माना नफ्सिही, तो यह उसकी अपनी जात के माना में है। वह अम्मा ज़ौजतु, और बाकी बीवी जो है भाई, बीवी उसका भी नफका खावंद पर लाजिम होगा, चाहे बीवी का दीन अलग ही क्यों ना हो। वजह यह कि उस औरत के साथ खावंद ने अकदे निकाह किया है, तो अकदे निकाह की वजह से खावंद खुद अपने ऊपर उसके नफके को लाजिम कर रहा है, लिहाजा वो नफका देना पड़ेगा चाहे दीन अलग ही क्यों ना हो भाई। कहते हैं वह अम्मा ज़ौजतु, और बाकी बीवी जो है यानी उसका नफका जो है, फली अन्न सबब हुवल अक्द सहीह, इसलिए क्योंकि बीवी के नफके का जो सबब है वो सही अक्द होता है, फइन्नहु बिइज़ाइल इहतिबास साबिती बिही, इसलिए क्योंकि यह नफका उस इहतिबास के मुकाबले में होता है, असाबिती बिही, जो इस सही अक्द की वजह से साबित हो। एक शख्स एक औरत के साथ सही अक्द कर ले और फिर उस अक्द के बाद इहतिबास भी पाया जाए, तो अब इस औरत का नफका इस खावंद के जिम्मे लाजिम है भाई, तो आकद भी सही हो और फिर उस आकद की वजह से इख्तिबास भी पाया जाए, फिर नफका आएगा भाई। तो यही बयान कर रहे हैं। फैन नहु बीजा इल एहतबास साबिती बिही, इसलिए क्योंकि जो बीवी का नफका होता है यह उस एहतबास के मुकाबले में होता है जो सही अकद की वजह से साबित हो। वक़द सहल अक़्दु बैन अल मुस्लिमी वल काफिरती, और अकद तो सही है मुसलमान और काफिरा औरत के दरमियान। वह तरत तबा अलैहि अल एहतबास, और इसी आकद पर एहतबास भी मुरतब होगा, औरत अपने आप को घर में रोक कर रखेगी। फवजबतिन नफकतु, तो इसका नफका भी खावन पर वाजिब होगा। वफी जमी अमाजा करना इन नमा तजिबुन नफकतु अलल अबी इदा लम यकुन लिस्सगीरी माल। यहां से साहिब हिदाया एक कीमती बात जिक्र फरमा रहे हैं, याद रखना भाई, याद रखो ये जो बीवी का नफका खावंद पर वाजिब होता है ये एहतबास की वजह से है कि बीवी ने खावंद के लिए अपने आप को घर में रोक कर रखा हुआ है। तो बीवी का नफका हर हाल में खावंद पर लाजिम होगा, चाहे बीवी मालदार ही क्यों ना हो। बेशक वो मालदार है लेकिन एहतबास तो पाया जा रहा है, और जब एहतबास मौजूद है तो खावंद पर उसका नफका आएगा भाई। लेकिन वालिदैन का नफका है या नाबालिग औलाद का नफका है, ये वाजिब होता है हाजत और जरूरत की वजह से। यानी ये जब मोहताज हैं, इनको जरूरत है, तो फिर इनका नफका बाप पर लाजिम होगा भाई। अगर इनका अपना माल मौजूद है, एक आदमी है उसके वालिदैन मालदार हैं, तो उनका नफका इस आदमी पर नहीं है क्योंकि वो मोहताज नहीं है भाई। इसी तरह अगर एक आदमी है उसकी नाबालिग औलाद है लेकिन उस नाबालिग औलाद के पास माल है, मसलन उनकी मां का इंतकाल हुआ था और मां की तरफ से इनको माल मिला है वरासत के अंदर भाई, तो जब इनका अपना माल मौजूद हो तो उसी में से इनके नफके का इंतजाम किया जाएगा, अब बाप पर वो नफका लाजिम नहीं। तो जाब्ता क्या हुआ कि बीवी का नफका हर हाल में खावंद के जिम्मे लाजिम, क्योंकि एहतबास पाया जा रहा है, चाहे बीवी मालदार हो चाहे गरीब हो। जबकि नाबालिग औलाद का नफका या अपने वालिदैन का नफका यह सिर्फ हाजत की वजह से इंसान पर लाजिम होगा, अगर इनका अपना माल मौजूद है फिर इस शख्स पर इनका नफका नहीं होगा। बात समझ में आ गई। कहते हैं वफी जमी अमाजा करना, और वो उन तमाम सूरतों में जो हमने जिक्र कर दी, यानी जिसमें बच्चे का नफका बाप पर होता है चाहे दीन अलग हो चाहे दीन अलग ना हो, तो इन तमाम सूरतों में। कहते हैं वफी जमी अमाजा करना, और इन तमाम सूरतों में जिनको हमने जिक्र कर दिया, इन नमा तजिबुन नफकतु अलल अबी, नफका बाप पर वाजिब होगा। इदा लम यकुन लिसगीर मालुन, जब सगीर का कोई माल ना हो। अम्मा इदा काना, बाकी अगर उसका माल है। फल असलु अन्ना नफकतल इंसान फी माली नफसी ही, तो असल यह है कि इंसान का नफका अपने जाती माल में होता है। सगीर अनकाना औ कबीरा, चाहे वो नाबालिग हो या बालिग हो। तो जब मां बाप या औलाद का अपना माल मौजूद है तो फिर उनका नफका उन्हीं के माल में से होगा। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।